पूछोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ओम शांति। ये गीत सुना आपने? गीत क्या कह रहा है? गीत के बोल क्या हैं? जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, ठीक है गलत है ये? मतलब आपने क्या सोचा फिर, आप हार्ट पेशेंट कैसे बन गए? हार्ट पेशेंट कैसे बने हैं जी? सोचा नहीं था, सोचा था ना, सोचा सोचा बिना सोचे तो नहीं बन सकते ना। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये तो, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये गीत जो है। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। छुहारी देवी आप इधर आके बैठ, यहाँ आ जाओ, आपको शक्ल दिखाई देनी चाहिए मुझे, इधर आ जाओ कोने इधर। ये इनको राबड़ी देवी सिंह का नाम है वैसे ना। अच्छा यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बीच में। हाँ सभी की शक्ल मुझे दिखाई देनी चाहिए, मेरे सामने रहने चाहिए ना, नज़रों के सामने है ना। यार इधर नहीं बैठो, पता पीछे चले जाओ, पीछे इधर नहीं बैठो, ये सीट पे नहीं बैठो। नहीं यहाँ नहीं बैठो बहन जी, पीछे बैठो, पीछे वो सीट खाली रहने दो, यहाँ नहीं बैठो, बीच में नहीं बैठो, पीछे जाके बैठो, पीछे जाके बैठो। नहीं ये हार्ट पेशेंट्स हैं, इनके बीच में नहीं बैठो, हार्ट पेशेंट्स के बीच में नहीं बैठो। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। तो सुना आपने, तो मतलब सोचना जो है, और फिर जैसा कर्म होगा वैसा फल पाएंगे, ये भी ठीक है गलत है? हाँ ठीक है गलत है। तो हमने ऐसा क्या सोचा कि हम हार्ट पेशेंट बने? ऐसा हमने क्या सोचा कि हमें डायबिटीज़ हो गई? ऐसा हमने क्या सोचा कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया? हुआ नहीं हुआ? ऐसा हमने क्या सोचा कि हमें और क्या हो गया है ना, सिर में दर्द हो गया, एसिडिटी बन गई है ना? ऐसा क्या सोचा आपने? आप अंदर अपने सोचो, कलन मदान। हाँ क्या क्या सोचा, क्या क्या कारण हुए ना, हाँ, फिर जैसे कर्म किए वैसा फल पाएंगे, कर्म जैसे किए उसके अनुसार फल पाया ना। तो ये हमें समझने की बात है कि हमारी सोच ही जिम्मेवार है हमारी बीमारी के लिए, है ना। जिसमें लिखा ना, सुखमय जीवन का आधार श्रेष्ठ विचार है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचारों में क्या आ गई, श्रेष्ठ नहीं रही, कनिष्ठ विचार, गंदे विचार हो गए, है ना। क्वालिटी ऑफ थॉट्स हमारे खराब हो गए, है ना। जो थॉट्स की क्वालिटी थी वो थॉट्स में अब शांति, जो हमारा नेचुरल गुण क्या है सभी का, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, है ना। ये हमारा नेचुरल गुण है, हर इंसान का नेचुरल गुण है। जैसे पानी का नेचुरल गुण क्या होता है, ठंडक। गर्मी लगे तो क्या मांगता है आदमी, पानी मांगता है, आइसक्रीम मांगता है। आइसक्रीम तो नहीं मांगता ना, ठंडक, गर्मी लगती है तो पानी मांगता है ना। तो पानी उसका गला तर कर देता है ना, नहीं। तो नेचुरल गुण है पानी का ठंडक। हालांकि वो गर्म हो जाए तो क्या हो जाता है, जला भी सकता है। वही पानी गर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, जल जाएंगे ना, उसकी भाप भी बन सकती है। क्योंकि उसको फिर छोड़ दो वैसा का वैसा तो क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, वापस ठंडा हो जाएगा। कितना भी पानी उबाल लो और उबाल के फिर आप छोड़ दो, ठीक है, 4 घंटे छोड़ दो उसको, फिर क्या हो जाएगा, वापस फिर ठंडा हो जाएगा, नहीं। तो इंसान जो है, नेचुरल स्वभाव इंसान का शांति है। कितना भी जल्दीबाजी कर ले इंसान, कितना भी टेंशन कर ले, कितना भी टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में आ जाए, अब वो जैसे टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर से निकलेगा क्या होगा, क्या होगा। आप अगर, आपके अंदर टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर है, परफेक्शन का प्रेशर है, तो क्या आपको नींद आ सकती है, हाँ? प्रेशर में सो सकता है आदमी, मुझे बताओ। ये बीच वाले जो भाई सब बीच में जो बैठे ना आपके साथ, हाँ, अलर्ट होके बैठो, गर्दन सीधी, अलर्ट, हाँ? और अलर्ट एकदम चुस्ती होनी चाहिए चेहरे पे ना, फ्रेशनेस, एकदम फ्रेश रहना चाहिए। बहन जी यहाँ नहीं बैठो, पीछे जाके बैठ जाओ, यहाँ नहीं बैठो, मेरे को दिखाई नहीं देंगे आप ना, पीछे जाके बैठ जाओ, इधर भी नहीं, पीछे पीछे वाले सोफे बैठ जाओ, पीछे जाके बैठो, पीछे पीछे, आगे बैठने से कुछ फायदा नहीं होता, पीछे जाके बैठो, पीछे जाके, पीछे भी सोफे पड़े ना, पीछे भी सोफे और कुर्सियां पड़ी ना, वहां जाके बैठ जाओ। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो नेचुरल, जो हमारी जैसे टेंडेंसी है ना पानी की, ठंडक है, तो हर इंसान की नेचुरल नेचर क्या है, शांति है। कि आ एक आदमी कितनी देर जल्दीबाजी कर सकता है, कितनी देर कर सकता है बताओ, कितनी देर कर सकता है, चिंता कितनी देर कर सकता है, गुस्सा कितनी देर कर सकता है। किंतु आदमी शांत क्या घंटों घंटों रह सकता है, दिन दिखाई दिन रह सकता है ना, प्यार से व्यवहार नेचुरली कर सकता है, खुश नेचुरली रह सकता है ना। तो किंतु जो भी परिस्थितियां आई, चाहे अंदर से आई चाहे बाहर से आई, वो हमें जल्दी करने पे मजबूर कर दिया उन्होंने, चाहे मेरी आदतों के वश या बाहर के प्रेशर्स आए या मुझे नाम मानशान का अभिमान हो गया, मेरा नाम है समाज में, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा नाम खराब नहीं हो जाए, ऐसी चीज है, ऐसे होनी चाहिए मेरी चीज, हर चीज ऐसे होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं। या जब मैंपन आया ना, मैंपन और मेरापन आया, तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट था कि हम प्रेशर में आ गए, नहीं, ईगो आ गई ना, ईगो और अटैचमेंट ऐसी जड़ थी जिससे हमारे अंदर क्या हुआ, हम प्रेशर्स में आने लगे, चिंता होने लगी, एंजाइटी, मेरी चीज, मेरापन, खराब नहीं हो जाए, गाड़ी मेरी गाड़ी निकलनी, तुम्हारी गाड़ी है क्या, ट्रेन तुम्हारी है क्या, मेरी गाड़ी निकल नहीं जाए, है ना, मेरी फ्लाइट उड़ नहीं जाए, है ना, मेरे बच्चे को ये नहीं हो जाए, मेरे इसको ऐसा नहीं हो जाए, नहीं, फिर शरीर, मेरे शरीर को ये नहीं हो जाए, है ना, ये भी तो मेरा है ना, मैं हूँ क्या, कभी बोलते हैं मैं शरीर हूँ, बोलते हैं कभी, कभी नहीं बोलते, कभी बोलते हैं क्या मैं शरीर, गलती से भी कोई आदमी बोलता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं पे बोलता है मैं शरीर हूँ, हमेशा मेरा बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं मैं हार्ट हूँ, ऐसे बोलते हैं क्या, मेरा हार्ट बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं मैं पेट हूँ, मेरा पेट बोलते हैं ना, मेरा लीवर बोलते हैं ना, नहीं, तो जब ये मेरापन ज़्यादा, मैंपन और मेरापन आया, उसके कारण से सारी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई ना, डर जो अंदर आया, वो इसी कारण से है। बात समझ में आ रही है आपको? अब हार्ट को क्या चाहिए था? कल ज्ञान सिंह ने बताया ना, हार्ट को क्या चाहिए? प्यार चाहिए था, और प्यार आपने दिया ही नहीं हार्ट को। आप सारे दिन गुस्से में रहे, नहीं रहे? एक बार गुस्सा करते 3 दिन तक असर रहता है आपके सिस्टम पे। 3 दिन तक आपका हार्ट का फ्लो, ब्लड फ्लो चालू ठीक से नहीं होता। एक बार गुस्सा कर, सिर्फ एक बार गुस्सा करना, ज़्यादा देर नहीं। एक बार चिंता करते हो 18 घंटे तक असर रहता है। एक बार प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में, तो 18 घंटे तक असर रहता है उसका। आपकी नेचुरल वो वापस अंदर से सारा सिस्टम दोबारा से स्टेबल हो जाए, दोबारा से जैसे पानी में पत्थर मारा, तुरंत पानी स्टेबल नहीं होता है, शांत नहीं होता है। लहरें कुछ देर आती रहती हैं, कुछ मिनट आती रहती हैं या कुछ सेकंड आती रहती हैं, उसके बाद पानी फिर शांत हो जाता है, है ना? झील में पानी डाल ऐसे मारे ना पत्थर, तो क्या होगा, एकदम लहर खत्म हो जाती क्या? हमने मारा और ख़त्म हो गया? नहीं, उस पर इफेक्ट आता रहता है। आपने एक गोली पॉइजन की खा ली, खाने में कितनी देर लगी? हाँ, मतलब मुँह में डाली और पानी से निकल ली, 10 सेकेंड लगे मान लीजिए ना, क्योंकि उसका इफेक्ट कितनी देर रहेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर कितनी देर रहेगा? हो सकता ऊपर ही लेके चला जाए, क्या पता वो एक दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, उल्टियाँ लगती रहे, जी खराब होता रहे, नहीं खाना ना पचे, पूरी लाइफ भी चल जाए, नहीं? सेम चीज़ हमारे अंदर है। एक बार क्रोध किया ना, उसका असर कितने दिन चलेगा? वापस नेचुरल आने में टाइम लगेगा, है ना? ऐसे एक बार जल्दीबाजी की कितनी देर असर चलेगा, चिंता की क्या कितनी देर असर चलेगा, उदास हो कितने दिन असर चलेगा? तो ये हमें समझना कि ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, जो हमारे हार्ट के नुकसान करने वाली, या हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन का, जो इंसुलिन ग्लूकागोन का बैलेंस है उसको ख़राब करने वाली, मतलब ये हमारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो सिस्टम जो कल राहुल भाई ने बताया, राहुल ने बताया होगा, और मैं उसको थोड़ा एलोबरेट भी करूँगा और गहराई से, कि कैसे हमारे सिस्टम सारे डिस्टर्ब हुए हैं, किस कारण, किस कारण? हमारे विचारों के कारण। हमने कैसे विचार, भले कुछ भी परिस्थितियां बनी हो, कुछ भी कंडीशंस हुई हो आपके घर में या बाहर में, आपके शरीर में, उसके बावजूद आपको कैसा करना चाहिए था? चाहिए था ऐसा करना, चाहिए था, क्योंकि शायद हमको पता नहीं था, हमने इसको नेचुरल समझ लिया था। मैं दोषी नहीं ठहरा रहा आपको, पर कहीं ना कहीं गलती तो हुई ना हमसे, नहीं कर्नल साहब, हुई कि नहीं हुई? गलती हुई कि नहीं हुई? कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ मदान जी से ना, गलती हुई ना? तो कहाँ, पता नहीं था ना, शायद इसको नेचुरल समझते, अपनी अपनी इच्छा ही समझते थे। अरे देखो मेरा सब काम एक्यूरेट टाइम पे होता, सब मुझसे डरते हैं ना, जहाँ मैं जाऊँ सब सीधे हो जाते हैं, है ना, पूरी 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 यूनिट के मेरे से कांपती है ना, पर कांपे वो नहीं, आप ही कांप गए नहीं वो तो थोड़ी देर के लिए कांपे, किंतु आप, हमारा शरीर पूरा कांप जाता है ना जब उसमें चलते ना ऐसे, है ना, तो पूरा सिस्टम ही कांप जाता है ना हमारा, नहीं? तो ये हमें समझना कि हमारे जो विचार थे, हमारे सोच ने हमें बीमारी पैदा की। ये अंदर से गहरे से उतार लो आप, ये गीत अंदर बजना चाहिए, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। वो तो अभी क्या, अगर हम सोच बदल दें तो क्या होगा? अगर हमारी सोच बदल जाए तो क्या हो जाएगा? अगर हम अच्छी सोच कर दें वापस तो क्या होगा? बीमारी ठीक हो जाएगी। बुरी सोच से बीमारी हुई, अच्छी सोच कर दें तो बीमारी खत्म हो जाएगी। सिंपल बात है, मुश्किल बात है? सिंपल है ना। और फिर जैसा कर्म होगा वैसा फल पाएंगे। अब जैसा मैंने कर्म किया, मैंने बबूल का पेड़ बो दिया, बबूल होता है ना, कांटे वाला पेड़ होता है, तो क्या मिलेगा वापस? कांटे मिलेंगे। क्या आम उगेंगे उस पे, बबूल के पेड़ पे? आम तो नहीं उगेंगे। अमरूद उगेंगे क्या? जामुन उगेंगे क्या? कांटे उगेंगे। तो जैसा हमने कर्म किया, ये भी रस्म, ये भी बात है। अब जो कुछ हमारे साथ चला है, जो कुछ भी हमारे पास, हमें माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, बच्चे मिले हैं, दोस्त मिले हैं, पड़ोसी मिले हैं, नौकर चाकर मिले हैं, क्यों मिले हैं? क्यों मिले हैं? किसका फल है? हमारे अपने कर्मों का फल है। इसलिए उसके लिए भी आप किसको दोषी नहीं ठहरा सकते। मेरी वाइफ मेरा मानती नहीं है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरा हस्बैंड मेरा कहना नहीं मानता है, मेरे हिसाब से चलता नहीं है, मेरे उल्टा उल्टा जो मैं हमेशा मेरे को मेरी इंसल्ट कर देते हैं, मेरे को ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, मेरी काम वाली भाई सुनते नहीं है, नौकर सुनते नहीं है, मेरे एम्प्लॉयज मेरी मानते नहीं है, वो भी किसका रिजल्ट है? हैं जी, वो भी कर्म, जैसा कर्म किया वैसा फल पाएंगे ना। तो उस कर्म से सोच पैदा होती है और सोच से फिर ये बीमारी पैदा होती है। तो अल्टीमेटली हमको अंदर से गहराई समझ लेना है कि हम अपने सोच को बदलना है और अपने कर्म को बदलना। कर्म क्या चीज़ है? कर्म किसे कहते हैं बताओ, कौन बताएगा? आप सभी इंटेलिजेंट लोग हो, सभी है ना समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, है ना, बताइए। हैं जी, मतलब कर्म कहेंगे किसको? क्या देखना कर्म है? क्या बोलना कर्म है? क्या सूंघना कर्म है? पढ़ना कर्म है? क्या सुनना कर्म है? क्या इन कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है? देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है। ठीक है, कई बार सोचते हैं कि हम काम जो किया ना घर में ऑफिस में काम करते हैं वही कर्म, वो नहीं है। हर चीज़ कर्म है, जो कुछ भी आप करते हो वो कर्म है। चलिए दो मिनट मेडिटेशन करते हैं। गीत बज रहा है ना ट्रैफिक कंट्रोल, ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसमें बीच में गीत बजता है, तो उसमें हमें 3 मिनट के लिए एकदम रुक जाना चाहिए और साइलेंस में अपने थॉट्स को साइलेंस में ला करके परमात्मा से कनेक्ट कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कर्म है, हम चलना फिरना भी कर्म है ना, पैदल करना भी कर्म है, मतलब हर चीज़, किसी से बातचीत करना भी कर्म है, कोई चीज़ को छूना भी कर्म है ना, किसी चीज़ को छूते हैं ना, किसी व्यक्ति को छूते हैं, हाथ से ऐसे किया, किसी को ऐसे किया, ये भी कर्म है। तो अब ये हम इसकी गहराई में चलते हैं कि कैसे अपने विचारों को कर्मों को बदलें, है ना। अगर विचार और कर्म हमारे बदल गए तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हमारे जीवन में दुख जो हमारे जीवन में आया, दर्द आया, वो हमारे कर्मों से आया। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हो गए तो हमारा जीवन में क्या आ जाएगा? दुख की बजाय सुख आ जाएगा और दर्द की बजाय क्या आ जाएगा? खुशियाँ आ जाएगी, आनंद आ जाएगा और फिर हमेशा हम एक रस रहेंगे। अभी हम क्या होते हैं? कभी ठंडे कभी गर्म, कभी ठंडे कभी गर्म, है ना। फिर क्या होगा? हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी, हम सदा मुस्कुराएंगे, सदा इजी रहेंगे, बिजी नहीं रहेंगे। अभी हम क्या रहते हैं? हमेशा क्या रहते हो? अभी बिजी रहते हो, फिर क्या हो जाएंगे? इजी। हम देखो, हमारे अपनी लाइफ में देखता हूँ, पहले मैं बहुत बिजी रहता था, बिजी मैंने हमेशा बिजी महसूस करता था। कभी भी मुझे कोई फ़ोन करता, आप ये काम करेंगे क्या, हमारे पास आएंगे, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, एक घंटे के मतलब एक महीने के बाद सोचूंगा ना। और अभी हम लोग कैसे हो गए? अभी हम जब से मेडिटेशन करना शुरू किया प्रैक्टिस, अभी हम इजी हो गए। कोई व्यक्ति कहीं भी मिलता है, रास्ते मिलता है, तो उसको हम बात कर लेते हैं, उनसे डिस्कस कर लेते हैं, उनकी बात को सॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि तो पहले नहीं था ऐसे। पहले एक मन में ईगो थी, नहीं नहीं मेरे से कोई ऐसे सहज थोड़ा मिल सकता है ना, किसी को मिलना हो तो मेरे से पहले बहुत टाइम लेना पड़ेगा ना, जो कि क्वालिफिकेशन होने के बाद, फिर कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद, फिर वो सब होता है ना एक अपॉइंटमेंट सिस्टम, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। हालांकि अपॉइंटमेंट तो अभी भी रखते हैं ताकि दूर के पेशेंट्स होते हैं उनको टाइम दे सकें, क्योंकि पर मतलब एक अंदर से ईजी फीलिंग आ गई, सहज फीलिंग आ गई। अभी हम अंदर से कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं करते, ईजी महसूस करते हैं, प्रेशर में रहते हैं, किसी चीज़ का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम, ये भी प्रेशर नहीं है, जैसा चल रहा है, जैसा सब सब लोग मिलजुल के कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार ठीक है, ड्रामा अनुसार जैसे चल रहा है, संसार रूपी नाटक है, इसमें डायरेक्टर जैसे, डायरेक्टर मैं नहीं हूँ ड्रामा इस संसार का, कौन है डायरेक्टर? हम सब एक्टर्स हैं, हमको चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। तो वो हमें अभी समझ में आ गई कि मेरे चलाने से दुनिया नहीं चलेगी, ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, इसको मैं कितना भी चाहूँ परफेक्शन परफेक्टली बना सकता, नहीं बना सकता। मेरा अगर ड्राइंग रूम में चीज़ें रखी हैं, सिस्टमेटिक रखी हैं, अब मैं चाहूँ ऐसे ऐसे रखी रहे, ऐसा हो सकता है क्या? कोई आएगा बिगाड़ेगा आगे पीछे करेगा, मैं चाहूँ ऐसे कैसे रह जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मैं चाहूँ मेरे बच्चे परफेक्ट रहे, मेरी वाइफ परफेक्ट रहे, मेरा हस्बैंड परफेक्ट रहे, हो सकता है? मेरे नौकर चाकर परफेक्ट रहे, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हर एक की अपनी सोच है, अपना अपना ढंग है, अपनी आदतें हैं, अपना परिवार है, अपनी पालना है, कैसे माँ बाप से निकल के आए, कैसे माँ बाप के साथ घर में रहे हैं, उसी अनुसार चलेंगे। नहीं नहीं ऐसे, अब मेरी बात समझ रहे हैं? पहले सारा टाइम ये सोचने में जाता था, सारा टाइम ये सोचने में, इसको सुधारूं, इसको सुधारूं, इसको सुधारूं, इसको सुधारूं। अब मैं किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता हूँ, अब मैं किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ मैं परफेक्ट हो जाऊं। परफेक्ट किसी में? शक्ल में नहीं, कपड़ों में नहीं, हाव भाव में नहीं, कि मेरा कनेक्शन इतना परफेक्ट लग जाए, एक सेकंड में लग जाए पावर हाउस से, घंटों घंटों में तड़पता नहीं रहूं कनेक्शन के लिए, ना लाइन ही नहीं मिले, लाइन बिजी है ना, लाइन बिजी, लाइन इज बिजी, लाइन इज बिजी नहीं चाहिए, लाइन एकदम हॉटलाइन कनेक्शन होना चाहिए परमात्मा। क्या होना चाहिए, कैसा कनेक्शन होना चाहिए? पावर हाउस से हॉटलाइन कनेक्शन होना चाहिए। कौन सा वाला? पीछे वाले जो भाई साहब है ना, ये जो आपके पीछे, उस ला पीछे, हाँ जी, अलर्ट, सुस्ती का माहौल नहीं है ना, क्योंकि एक आदमी सुस्त होता है उसके आसपास चार पांच लोग सुस्त हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे इन्फेक्शन जैसे हैजा होता है ना, हैजा फैल जाता है ना, ऐसे ये भी हैजा जैसा बीमारी है ना। एक आदमी ढीला होएगा, आसपास के चार पांच लोग और ढीले हो जाएंगे, एक आदमी गर्दन ऐसे करेगा, सबकी गर्दन आसपास ढीली हो जाएगी ना, है ना, नहीं, इसलिए अलर्ट रखना पड़ेगा। अच्छा, मेरे सामने को सोना किसका भी बड़ा मुश्किल काम है ना, क्योंकि मेरे सामने ना, मैं क्या होता है, मेरे यहाँ से ना हर एक, मेरे यहाँ से एक धागा निकलता है, हर एक के वहाँ जाके लग जाता है ना, और कोई ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, तो क्या होगा? चाहे मैं देखूँ नहीं देखूँ, मुझे तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है, इसने मेरे सामने सोना, मतलब आप हाथ लगा दो, हाथ उठ खड़ा कर दो, मैं सो रहा हूँ, तो मैं फिर अपना धागा निकाल दूँ आपका, फिर आप जो मर्जी करो ना, नहीं तो, ताकि आप अलर्ट हो, आराम सो जाओ, इसलिए अटेंशन रखने की जरूरत है ना, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, कोई एक भी सो रहा होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। हालांकि मैं समझता हूँ सोने का टाइम है, सबको नींद आती है खाना खाने के बाद, है ना, तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप बच्चे हो, भी छोटे छोटे बच्चे हो ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मतलब बता के सो जाना, है ना, ठीक है, खड़े होकर बता दो, हाथ खड़ा करके मुझे बता दो कि मैं सोना चाहता हूँ, मैं आपको अपना धागा निकाल दूँ, ठीक है, आपको फ्री कर देंगे ना, ठीक है, ओके, चलिए। तो ये बात क्लियर होगी जो मैंने पहले बात की आपको, सोच और कर्म, है ना, अगर हम हमारा जो भी, हम किसी के जिम्मेवार ठहरा नहीं सकते हैं कि मेरी आर्टरी, मेरी ब्लॉकेज, मेरी डायबिटीज़, मेरी बीमारी इसके कारण हो गई, मेरा सिर दर्द इसके कारण हुआ, क्योंकि जब मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, हमेशा हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ अकेले मत आओ, अगर वाइफ बीमार है तो कहता हूँ हस्बैंड को लेके आओ, हस्बैंड बीमार है तो कहता हूँ वाइफ को लेके आओ, मैं दोनों साथ में आओ, है ना। तो जब वो लोग आते हैं तो उनको मतलब जो है वो, जब मैं कहता हूँ ना, आप सपोज हस्बैंड बीमार है तो उसकी छः ब्लॉकेज हैं या आठ ब्लॉक, आठ जगह उसने आर्टरी ब्लॉक की, 100% 90% 80% ऐसे कई जगह कई ब्लॉक्स किए, तो मैं कहता हूँ भैया आपके इतने सारे ब्लॉक्स कैसे हो गए, इतनी आपकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो गई? तो वो ना अपनी पत्नी की तरह देखता है ना, कि जड़ यहाँ बैठी है ना, है ना, नहीं, अगर औरत बीमार है, पत्नी बीमार है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी आपकी कैसे बैठ, तो वो अपने पति की तरह देखती है, कहते वो जड़ देखो ये बैठा है ना, है जी, जड़ को साथ लाए। पर ये गलत है, ये जड़ नहीं है, ये जड़ आपकी सोच है, ये नहीं गीत में गाया कि आपकी पत्नी की सोच के कारण आप बीमार हो जाओगे, आपकी पत्नी कर्म के कारण आप बीमार हो जाओ, ये गीत था क्या, है ना, आपकी पत्नी के साथ आप ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है ना, या आपके पति के कारण ऐसा हो, ऐसा तो नहीं है ना, आपकी अपनी सोच है, वो जैसे भी हो, मैंने बताया वो परिस्थिति है, पति या पत्नी परिस्थिति है, वो आपकी स्थिति नहीं है, वो पर है, वो आप हैं क्या? पति या पत्नी आप नहीं हो, आप अपना खुद का कंट्रोल आपके पास है ना, कोई आपको रोड पे ट्रैफिक ज्यादा हो तो मतलब एक्सीडेंट कर लोगे आप, तो कंट्रोल तो आपके हाथ में ना, ब्रेक तो आपके हाथ में, स्टेयरिंग आपके हाथ में, क्लच आपके हाथ में, एक्सेलेटर आपके हाथ में, हॉर्न आपके हाथ में, रुकना ना रुकना आपके हाथ में है ना, तेज चलाना स्लो चलाना आपके हाथ में। नहीं नहीं ट्रैफिक बहुत था इसलिए एक्सीडेंट कर दिया मैंने, ठीक है एक्सीडेंट कर लिया तो ठीक है फिर अब हर्जा उसका हर्जाना भरो है ना, नहीं हुआ गाड़ी खराब हो गई तुम्हारी भी खराब है उसकी भी खराब है उसकी, ठीक है तुम करो उसकी। ये नहीं कितना भी ट्रैफिक कितनी भी समस्या हो, हम रोड पे दिल्ली पे मकान दिल्ली में जब कार चलाते थे तो कितना ट्रैफिक होता था, लाइन अभी भी कितनी लाइन लाइन होती, कितने फ्लाईओवर्स थे। मैं तो 95 में दिल्ली छोड़ी, उस समय तो इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे, फ्लाईओवर सारे बने बाद में हैं, दो चार फ्लाईओवर सारे दिल्ली में थे, तो अभी तो कितने ही फ्लाईओवर हैं, हर जगह ही जगह फ्लाईओवर है ना। तो मतलब अभी भी इतना ट्रैफिक, अभी पीछे गए थे हम लोग, इतना ट्रैफिक है बात नहीं मत पूछो, आधा आधा घंटा बीच में रुक जाते हैं और इतनी गाड़ी के पीछे गाइड चलती है एकदम से, तो मतलब इतना ट्रैफिक वहाँ, हमको अटेंशन मेरी अपनी रखनी है ना। मैं कह सकता हूँ मेरी गाड़ी आगे पीछे 10 गाड़ी आ थी 10 पीछे थी, क्या करूँ मैं है ना, इधर भी गाड़ी थी मैं क्या करूँ, नहीं इट इज़ माई। कितना भी प्रेशर हो, कितना भी ट्रैफिक हो, कितनी भी समस्याएं हो, मुझे अपनी गाड़ी चलानी है राइट। गाड़ी कौन सा माना, गाड़ी माना शरीर, मन और शरीर दो गाड़ी है इंसान के पास ना, आत्मा के पास दो गाड़ी है, कौन कौन सी, एक मन है और एक शरीर है। मन सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है, दिखाई देता है, दोनों को मुझे चलाना है। मन मन में क्या चलेगी, सोच, और शरीर से क्या होगा, कर्म। तो सोच से जैसे सोच होगी वैसा बन जाएंगे, वो शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे फिर कर्म होंगे वैसा फल पाएंगे राइट। तो इसकी गहराई में आप उतर जाओ, समझ लो, इसलिए सेकंड टाइम आने वाले को भी बता रहा हूँ, इसकी गहराई में उतर जाओ, कभी किसी को दोषी मत ठहराओ कि जहाँ आपने दोषी ठहराया ना मेरी बीमारी इस कारण है, मतलब आपने कंट्रोल अपना किसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया। कंट्रोल आपका अपने हाथ में होना चाहिए, कभी अपनी गाड़ी कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में, अपने हाथ में, आपके अपने हाथ में होना चाहिए ठीक है। तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में, आपकी सोच और आपके किसी, कभी ये नहीं मत सोचो कि मेरी पत्नी के कारण है, मेरे पति के कारण, मेरे बच्चों के कारण, मेरी जॉब के कारण, ऐसा नहीं, किसी के कारण नहीं हुआ आपका। जब आप अंदर से पहले रियलाइज कर लो कि मैं ही अपनी बीमारी का कारण हूँ, चाहे कोई बीमारी है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की बीमारी है, या माइग्रेन है, या कुछ भी बीमारी है, डिप्रेशन है मुझे हुआ है, या नींद नहीं आ रही, इसका कारण मैं खुद हूँ और ये मुझे खुद ठीक करना है। सुना आपने, ये सीधा होके बैठे ये, हाँ जी मनोज जी आप भी अलर्ट होके बैठे, तो सुना, चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग है ना। ये प्रदीप भाई, राम कुमार जी, ये क्या है, इसकी तबीयत लगता ख़राब है, इसको थोड़ा आगे मूव करें। तो ये मैं आपको, जैसे आपको कल बताया था राहुल ने, कि हमारा जो मन है एक ब्रेन है ना, ये तो चालू किया ना आपने, ब्रेन हमारा फिजिकल है, जो हमारे खोपड़ी के अंदर ब्रेन है ना, वो फिजिकल, उसको हम देख सकते हैं। क्या हुआ, ब्रेन हमारा फिजिकल है, इसमें 1200 ग्राम इसका वजन है, मन का वजन कितना होता है बोलो, मन का वजन कितना है वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह मन का वजन कितना होता है, कितने ग्राम होता है बोलो, ब्रेन का वजन 1200, मन का वजन कितना, पर अधिकतर लोग बोलते हैं कि आज मेरा मन इतना भारी है कि मैं बिस्तर से नहीं उठ सकता हूँ, तो वजन तो हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ ना, क्योंकि तो कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, आज मेरा मन इतना हल्का है लगता है जैसे हवा में उड़ रहा हूँ, तो हल्का कब होता है, भारी कब होता है, कैसे सोच में भारी होता है, कैसे सोचोगी वैसे कब भारी होएगा, पास्ट की बातें याद आएंगी तो भारी हो जाएगा, तो पास्ट में क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, हाँ जी, और हल्का कब हो जाता है, हाँ जी, जब पॉजिटिव होता है तो मन हल्का हो जाता है ठीक है। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे समझाता हूँ, शुरू हो गए, तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है 3D हेल्थ केयर, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, अर्थात 3 डायमेंशन इंसान की कौन कौन सी है, सोल, पहली डायमेंशन है सोल, दूसरी डायमेंशन माइंड, और थर्ड डायमेंशन कौन सी है? बॉडी, है ना। तो तीनों मतलब तीनों डायमेंशन इंसान की, जो तीनों डायमेंशन है, एक बॉडी है, आत्मा है, और ये हमारा क्या है, ब्रेन दिखाया पर मन, है ना। तो तीनों के बैलेंस से ही एक इंसान चल सकता है, और तीनों की केयर करने से ही हम हेल्दी, हमारा हार्ट हेल्दी हो सकता है, हैप्पी हो सकता है हमारा मन, और शरीर हमारा स्वस्थ हो सकता है ना। इसकी कनेक्शन तो वहाँ है। तो ये है अनरेवलिंग मिस्ट्रीज ऑफ माइंड एंड माइंड बॉडी कनेक्शन, है ना, माइंड बॉडी रिलेशनशिप। क्या है मन? मन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, आज तक भी मॉडर्न मेडिसिन तो मन के बारे में जानती नहीं है, बहुत थोड़ा सा जानती है, डिटेल में उसको पता ही नहीं है, ना हम पढ़ाते हैं बच्चों को। मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं, MBBS में दाखिल होते हैं बच्चे, या BAMS में भी जाते हैं, तो इतना मन के बारे में क्लैरिटी ना होम्योपैथी में है, ना कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं होती मन क्या चीज़ है, और मन और शरीर का आपस में कनेक्शन क्या है। बहुत ही मतलब बहुत ही रफ सा आइडिया लोगों को है इसके बारे में ना। तो हम ये सारी इसके बारे आज समझेंगे कि मन क्या चीज़ है ना। जैसे कल आपको ये स्लाइड दिखाई थी, कल भी, क्या मन और ब्रेन सेम है? नहीं, ब्रेन फिजिकल है, ब्रेन हार्डवेयर है, और मन क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसमें जो आप स्लाइड देख रहे हैं क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं डालें तो स्लाइड दिखाई देगी? कोई भी कंप्यूटर उठा के आप देखना शुरू कर दो, दिखाई देगा क्या? जो डाला होगा वही दिखाएगा ना। तो अगर मेरे मन में जो विचार है, जो भावना है, उसको दिखाने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए। आत्मा बाहर है, मन उसके साथ है, किंतु वो आत्मा बिंदु बाहर रह के कुछ दिखा सकती है क्या? कुछ बोल सकती है? कुछ नहीं कर सकती। आत्मा शरीर के बाहर रह के कुछ भी नहीं कर सकती। उसको भूख भी लगती है ना, पानी भी, प्यास भी लगती है, किंतु वो ना खाना खा सकती है ना पानी पी सकती है। इसलिए कहते भटक रही है आत्मा, क्या कर रही है? शरीर छूट गया, नया शरीर मिला नहीं, तो आत्मा भटक रही है, कभी इसको तंग करती है, कभी इसको तंग करती है, कभी इसको तंग करती है, कभी उसके शरीर में घुस जाती है, कभी उसके शरीर में घुस जाती है। सुनते होंगे ना आप, कहते हैं भूत घुस गया इसके अंदर, इविल सोल आ गई, कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो है मतलब, तो ये जो है हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है ना। ये फिजिकल है, इसका वजन 1200 ग्राम, इसका वजन नॉन फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट है ना। इसके दो पार्ट है, हायर ब्रेन, इसमें 100 अरब न्यूरॉन्स का बना हुआ है, 100 अरब माना 10,000 करोड़ नर्व सेल्स हैं जिनका हमारा ब्रेन बना हुआ है। कितने सेल्स का बना हुआ है? 10,000 करोड़, है ना। मतलब जैसे ईंटें होती ना, एक मकान ईंटों से बनता है, वो ऐसे ही हमारा ब्रेन कितनी सेल से बना हुआ है, कितनी ईंटों से बना हुआ है। वो ईंटें तो निर्जीव होती हैं, जड़ होती हैं, किंतु आत्मा जितनी ब्रेन की सेल्स है सारी एक्टिव है, सजीव है, जिंदा है, काम करती हैं। ईंटें कुछ नहीं करती, ईंटें लगा दी, एक बार लग गई, है ना। वो कुछ उसमें कनेक्शन नहीं होता आपस में, क्योंकि तो ब्रेन की हर सेल का दूसरी सेल से कनेक्शन है ना। मैसेज लेके जाए उसमें, मैसेज रिकॉर्डिंग होती है, हर चीज होती है उसके अंदर। तो इसके दो पार्ट हैं, हायर ब्रेन और लोअर ब्रेन। कल आपको थोड़ा सा बताया होगा, मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूँ आपको। जो हमारा हायर ब्रेन है, ये हमारा दो ब्रेन है ना हमारे, एक राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। देखो हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा मस्तक ऐसे होता है, सीधा, है ना, सीधा मस्तक है ना हमारा। और शेर का मस्तक कैसा है, कुत्ते का, बिल्ली कैसे है? एकदम आंखों से पीछे जाता है, आंखों से ऐसे जाता है, हमारा मस्तक सीधा ऐसे, है ना। सिर्फ हाथी को छोड़ के बाकी सबका मस्तक कैसा होता है? आंख से ही पीछे को जाता है। तो हमारा मस्तक यहाँ, ये हमारा जो कॉर्टेक्स है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हमारी स्पेशल चीज़ है, इसको हम हायर ब्रेन कहते हैं। इसमें जो फंक्शन है वो जानवरों में नहीं होते, है ना। तो ये हमारा हायर ब्रेन है, ये आपके साथ जो बैठे हैं भाई साहब, मुझ ना। और इस दोनों का कंट्रोल रूम जो है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम जो है वो है, इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो एरिया, ये हाइपोथैलेमस कहलाता है, ये हाइपोथैलेमस है। और इसके नीचे जो, इसके जो ये फिर नीचे लोअर ब्रेन है, ये दिखाया ना नीचे आपने, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये हायर ब्रेन है, देख रहे हैं ये वाला जो हमारी खोपड़ी के अंदर है, और ये जो देख रहे हैं नीचे, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये लोअर ब्रेन है और इसके पीछे सेरिबेलम है, ये इसको चीज छोटा ब्रेन कहते हैं इसको। ये ब्रेन का काम है कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन माना हमारे हाथ पैरों के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है ना। नहीं तो मैं जैसे लिखना चाहता हूँ लिख नहीं पाऊंगा, अगर ये खराबी आ जाए इसके अंदर पीछे वाले हिस्से में, पीछे वाले दिमाग के हिस्से में, तो मेरे हाथ पैर मैं ठीक से चल ही नहीं पाऊंगा, कोऑर्डिनेटिंग मेरी गेटिंग मेरी चाली खराब हो जाएगी, मैं कुछ लिखना चाहूँ लिख ही नहीं पाऊंगा, है ना। लिखने जाऊँ कुछ तो मेरा हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, है ना, मतलब मेरी आंखें भी टिकेंगी नहीं, आंखें भी यूं यूं करती रहेंगी, लगातार यूं यूं करती रहेंगी ना, मतलब कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। मैं कुछ हाथ से हाथ मिलने से हाथ मिलाना चाहूँ तो हाथ ऐसे ऐसे करेगा, आप मिलाने जाऊँ ना मेरा आप मुझसे हाथ मिलाने आएंगे तो मेरा हाथ यूं यूं करता रहेगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगा, है ना, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। तो पर हायर ब्रेन का काम है हायर फंक्शन क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स राइट और लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, लॉजिकल समझते हैं, कन्वेंशनल। एक पेड़ से सेब टूटा कहाँ जाएगा, नीचे गिरे नीचे आएगा ना, इसको बोलते लॉजिक, है ना, दो जमा दो कितना होता है चार, ये लॉजिक है ठीक है। और दो जमा दो पांच कहो तो इलॉजिकल हो गया ना, है ना। तो ये हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन ऐसा कहता है ठीक है। राइट ब्रेन जो है हमारा क्या है, क्रिएटिव ब्रेन है, क्रिएटिव माना इमोशनल ब्रेन है, भावुक ब्रेन है, है ना, ये हमारा भावुक ब्रेन है। ये क्या कहता है, पंछी को आसमान में देखा, अरे हमको भी ऐसे आसमान में उड़ना है, है ना, अरे ऊपर देखो सूरज चांद में है ना ऊपर, हम भी वहां जाके रहे, है ना, ऐसे रह सकते हैं हम, कहते हैं ना फूलों के शहर में हो घर अपना, है ना, है ना, ऐसा गीत बनाओ ना कुछ, हमारा घर कहाँ पे होना चाहिए, चांद तारों के बीच में होना चाहिए, है ना, आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं, मतलब चांद तारे चमकेंगे ना वहाँ पर तो उसकी लाइट हमें बहुत है, है ना, तो चांद तारों के बीच में हमारा घर हो सकता है, हो सकता है नहीं, मतलब ये जो है ये सोच ना, जैसे मैं भी पश्चिम पंछी की तरह उड़ूँ, है ना, मैं भी ऐसे बना दूँ, मैं भी ऐसा हो जाऊँ, मैं भी ऐसे कर लूँ, है ना, ये जो सोच है ना हमारी, ये क्या है, भावुकता है, इमोशनल है, इमोशंस है, पर दोनों जरूरी क्यों जरूरी है या नहीं जरूरी है। अगर इंसान की सोच ऐसी ना आती है, भावना ना आती कि मैं उड़ूँ, तो आज उड़ता आदमी, आज आदमी उड़ता है कि नहीं उड़ता है, हवा में उड़ता है नहीं उड़ता है, खाली खुद नहीं उड़ता, 30 किलो का वजन लेके भी उड़ता है ना, 25 किलो 30 किलो वाला वजन अलाउड होता है ना वो लेके, खाली कितने लोग उड़ जाते हैं एक साथ, 200 लोग भी उड़ जाते हैं, 500 लोग भी एक साथ उड़ सकते हैं ना, आजकल बड़े बड़े बने ना जो एयरबस 350 बनी ना जो, उसे 500 लोग भी एक साथ उड़ जाते हैं, डबल डेकर बसेज है ना वो, डबल डेकर एरोप्लेन्स है ना, नहीं उसमें दो दो मंजिल है ना, उसमें कितने लोग बैठ जाते हैं आराम से, है ना, और कितनी आराम से उड़ता है ना, ऐसे हर चीज़ इंजन बना, कुछ भी चीज़ें बनी है, सारी सारी कहाँ से बनी है, क्रिएटिव ब्रेन ने काम किया ना, राइट। यूजली मेल्स जो होते हैं ना, मेल्स पुरुष जो होते हैं उनका यूजली, रूल नहीं है, यूजली वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं, लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, और जो बहनें होती हैं माताएं होती हैं वो ज़्यादा क्या होती है, राइट ब्रेन डोमिनेंट होती है, ठीक है, इमोशनल ज़्यादा होती है ना, तो उनको ज़्यादा, उनको जहाँ जहाँ आदमी सोचना, आदमी की सोच बंद होती है वहाँ से उनकी शुरू होती है ना, वो कई ऐसी ऐसी बातें करती है आदमी को समझ नहीं आती है ना, और जो औरतें बातें करती हैं वो आदमी को समझ नहीं आती है, डायमेंशन ही अलग है ना, उनका सोच ही अलग होती है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, वो कहते ऐसे हो ही नहीं सकता, तुम क्या बात करती हो, फालतू की बात करती हो, वो कहते तुम फालतू की बात करते हो, है ना, तो कभी आपस में मतलब ना उनकी जैसे आपस में बनती नहीं ना, यूजली नहीं बनती ना, बनती है क्या, बनती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी बन जाती है, साल में एक दो बार बन जाते हैं ना, है ना, तो मतलब इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनकी सोच ही अलग होती है ना, और जबकि जो फरिश्ते होते हैं ना, एंजल्स जिसे कहते हैं, उनमें राइट और ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का इक्वल होता है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन इक्वल होता है, इससे फरिश्ते कभी लड़ते नहीं आपस में, है ना, आदमी औरत लड़ते हैं, है ना, क्योंकि फरिश्ते कभी लड़ते नहीं है, और देवी देवता वहां भी ब्रेन इक्वल होता है दोनों का, राइट और लेफ्ट का बैलेंस होता है, पूरा बैलेंस होता है, मतलब वहां पर कोई भी भावना ज्ञान युक्त होती है और कोई भी ज्ञान में भावना होती है, राइट, दोनों का बैलेंस है। इसलिए एक अच्छा कंप्लीट इंसान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? फरिश्ता बनना पड़ेगा, एंजल बनना पड़ेगा ना। इसलिए एंजलों की, एंजल्स की महानता गाई जाती है ना। हर आदमी चाहता है कि मैं भी ऐसे बन जाऊँ, है ना, कि तो वो उसके राइट और लेफ्ट ब्रेन का इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारा आज का इंसान क्या है, आज का जैसे मेल क्या है, ऐसा वाला सी, या मैं ऐसे नहीं कहता कि मेल भी ऐसा, मतलब कोई भी, मतलब मेल फीमेल क्या है, मैं ये नहीं कहता मेल ऐसा है और फीमेल ऐसी है, कोई भी हो सकता है ना, फीमेल ऐसे है। अब दो हैं, एक उल्टा सी एक सीधा सी, है ना। अब दोनों मिलके क्या बन सकते हैं, अब दोनों मिल जाएं, शादी हो गई ना, अभी क्या बने, क्या बन गया, ये बनना है सी, बनना है जीरो, कंप्लीट कौन है, जीरो, है ना। तो बनना जीरो है, किंतु ये जीरो बन सकता है क्या? दो सी मिलके कभी जीरो बन सकता है? बन सकता है, बोलो, बन सकता है जीरो? इसलिए आपस में खींचतान चलती रहती है। उसको तुम ऐसे हो जाओ, वो कहते तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, सारे जीवन में कभी भी जीरो बन सकते हैं? नहीं बन पाते ना, नहीं बन पाते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, टेक्निक गलत है। सी कभी जीरो नहीं बन सकता है। इसलिए अगर सी, मतलब एक सी, माना कोई भी मेल या फीमेल अगर मेडिटेशन करे तो ये जीरो बन जाएगा, और ये भी, ये सी भी अगर मेडिटेशन करे तो क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों जीरो बन गए ना। ये है आज का इंसान, आज का ग्रस्त, है ना। ये है सतयुग का ग्रस्त, ये लक्ष्मी नारायण, है ना, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, एक दूसरे पे भारी नहीं है ना। ये असली जीवन साथी है, क्या है ये, जीवन साथी है। और अभी क्या है, ये क्या है, ये जीवन हाथी है, है ना, है ना, एक दूसरे पे भारी है, है ना, समझ रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं आपस में, मेरी सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से, वो समझते मेरी सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से, नहीं तो प्रॉब्लम यहां पर है। तो जीवन साथी बनना है। अभी आप क्या है, क्या है आप, हाथी, हाथी मेरे साथी, है ना, क्या बनना है, हाँ क्या बनना है, शर्माओ नहीं, बोलो बोलो, मुझसे बोलो, क्या बनना है, जीवन साथी, है ना। मतलब आपस में हमारी थॉट इतने इक्वल होने चाहिए, जैसे कहते हैं ना, इशारों इशारों से या आंखों आंखों से बात हो जानी चाहिए। मेरे मन में वही विचार आने चाहिए जो मेरी पत्नी के विचार मन में आए, मेरी पत्नी के विचार में आए तो, मन में आए तो वो मेरे को टच होना चाहिए, मेरे अंदर वही विचार आना चाहिए। इसे बोलते एक रस्ता, एक रस, है ना। नहीं तो आपके, आप देखने, अभी देखते होंगे अपने घरों में, आप कुछ सोचते हो, आपकी पत्नी आपको अपोजिट सोचती है, है ना, और बच्चे उससे भी अपोजिट सोचते हैं, है ना, आपकी पत्नी जो सोचती है आप उसको उल्टा सोचते हो, है ना। मतलब कभी भी एक रस कोई बात पे अगर डिस्कस होती है तो एक जैसी बात बन जाए, मुश्किल होती है, मुश्किल होती है कि ईजी होती है, मुश्किल होती है ना। तो मतलब ये जो कारण, ये वाला कारण है। तो जितना अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सोच दोनों की इक्वल हो जाएगी और एक दूसरे को वाइब्रेशन टच होंगे, समझ रहे हैं। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जैसे एक एक हर बात वो यही निकलेगा कि हाँ देखो, अरे आपने अभी बोला ना, मैं यही सोच रही थी, मैं ऐसा ही सोच रहा था, मैं, मेरे मन में भी यही बात थी, है ना। दिखाने के लिए नहीं, अभी तो दिखाने के लिए बोलते हैं, है ना, अपोजिट बात आ रही होती है डर के भी बोलते हैं ना, है ना, एक दूसरे को डर लगता है तो बोल देते हैं, नहीं नहीं मैं तो, नहीं मैं भी सोच रहा था ना, तो अभी डर के बोलते हैं, किंतु रियल में फिर ऐसा होगा, है ना। भावना एकदम ऐसी ऐसी रहेंगी जैसे कि एकदम सारे घर में एक अभी तो तूफान सा रहता है, विचारों का तूफान सा रहता है, घर में जाके शांति महसूस नहीं होती है। आज से 60-70 साल पहले भी घर में शांति, बहुत शांति होती थी, है ना, आदमी कितना मजे थका है एकदम रिलीफ हो जाता था, है ना। तो अभी घर में हमारे ऐसा नहीं रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो, आज से अपने चले जाओ 50 साल पहले, अपने माता पिता का व्यवहार देखो और अभी आप आपस में अपना व्यवहार देखो, कितना फर्क है। पहले अच्छा था क्या, अब अच्छा है, पहले अच्छा था ना, क्योंकि ये जो है अभी एकदम एकदम परिवर्तन होता आया है ना, पिछले 50-60 साल में बहुत ज्यादा हो गया, पर उससे मान लो आप 500 साल पहले चले जाओ तो क्या होता होगा, और उससे और 500 साल पहले चले जाओ फिर क्या होता होगा ना, और जब 5000 साल पहले की बात जो करेंगे सत्ययुग में क्या होता है कि सचमुच में हम एकदम एक रस होते हैं, एकदम गहरी शांति की अनुभूति, गहरा प्यार, गहरी खुशी, गहरा आनंद की अनुभूति होती है। तो सारी प्रॉब्लम्स का कारण ही हमारी सोच है ना। तो ये हमें देखना है कि तो ये हमारे जो ये हमारा हायर ब्रेन है और ये हमारा लोअर ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है। यहीं पर एक घड़ी है जिसको हम जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। उस घड़ी में सोने का समय है, अगर आप उस समय सोने जाए तो आपको बढ़िया नींद आएगी और थोड़े समय में ज़्यादा गहरी नींद आएगी और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे। अगर उस समय की बजाय किसी और समय सोने जाएंगे तो आपकी नींद आपको 2 घंटा 4-6 घंटा 8 घंटा सो के भी आप फ्रेश नहीं होंगे। अगर आप उस समय टाइम पर अपनी घड़ी के अनुसार सोएंगे तो आपको कुछ 4-6 घंटे में इतनी अच्छी नींद आ जाएगी कि आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, राइट। नहीं तो 12 घंटा सो के भी आप फ्रेश नहीं रहेंगे, 12 घंटा सोने के बाद भी आपको दिन में भी नींद आती रहेगी, थके थके रहोगे, ठीक है। तो ये जो हमारे हर चीज का समय, मेडिटेशन करने का भी समय है। ऐसे तो मेडिटेशन सारा दिन चलता है, 24 घंटे आप मेडिटेटिव मोड में रहते हैं, किंतु आपका कुछ समय मतलब विशेष आपका समय उसमें आप मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, राइट। प्लानिंग करने का भी समय है, जो मैंने आपको परसों बात शेयर की थी, क्लियर वॉयंस की बात कर रहा था मैं आपसे, क्लियर विजन की बात कर रहा था। जो आप 4-4 घंटा 6-6 घंटा मीटिंग करके दिन में 10 लोगों से डिस्कस करके भी आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, कोई बात का जजमेंट नहीं निकलता अंदर से, वो आप सुबह सुबह मेडिटेशन करने के बाद, और आपको इतनी सुंदर अपने अंदर मन क्लियर विजन होती है, सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं हर प्रॉब्लम के, जो आप सारा दिन निकाल सकते हो। तो प्लानिंग करने का समय, कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने का समय, वो टाइम इमीडिएटली आफ्टर मेडिटेशन है, राइट। फिर आपको वॉकिंग करने का भी समय है, वो आपका जैसे सनराइज होता है ना, उसका कनेक्शन है उससे। एक्चुअली हमारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक का इस सूरज से बहुत कनेक्शन है, बाहर का जो सूरज है ना इससे बहुत कनेक्शन है, और हमारे हार्मोन्स के साथ बहुत कनेक्शन है। जो हमारी हार्मोनल साइकिल है, हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है हमारे अंदर, उससे बहुत कनेक्शन है। पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा हमारे अंदर, एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, वो सारी 7 ग्लैंड्स जो हमारी हार्मोन्स की हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, हार्मोन्स जिनसे निकलते हैं, उनका कनेक्शन हमारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ है। अगर आप उसके अनुसार हर कर्म करेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे और आपके शरीर की हर सेल एक्यूरेट काम करेगी और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगी, कम एनर्जी खर्च करके ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। यस, आपके साथ अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, गर्दन सीधी कर लो, कान अपने ऐसे से कर लो, कान अपने ऐसे से कर लो, दोनों कान, आप पीछे वाले भी अच्छे से करो, शर्माओ नहीं, मैं ठीक बता रहा हूँ, करो। उसके पीछे रीजन बताता हूँ अभी क्या होता है। तो ये जो है यहाँ घड़ी है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, ऐसे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ हमारे अंदर, वो भी हाइपोथैलेमस में ही है, थर्मोस्टेट है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रखना हर समय, जैसे हम रशिया गए थे अभी तो -10 टेम्परेचर था वहाँ पे, कभी कभी -20, -30 भी होता है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हमारे इंडिया के काफ़ी सारे बच्चे वहाँ जाके MBBS करते हैं, है ना, और -20, -30 टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ भी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही होता है, बाहर -20, -30 है, सब कुछ वाइट हो गया है, सारा देश ही वाइट हो गया है ना। सब देखो तो नदी भी जमी पड़ी है वहाँ पे, नदी मतलब जम जाती है, पूरी की पूरी नदी जम जाती है, उस पर आप साइकिल चला सकते हो, कार चला सकते हो, है ना, नदी के ऊपर से, है ना, मतलब ऐसी एकदम पूरी सॉलिड हो जाती है, -30 पे -20 पे हर चीज़ जम जाती है ना। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, और बाहर 50 भी हो जाए तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, ठीक है। तो अंदर थर्मोस्टेट है, वो ब्लड फ्लो को इस तरह से चलाती है उस घड़ी, अंदर वाली दूसरी जो थर्मोस्टेट है, कि आपका टेम्परेचर हमेशा ही 37 रहता है। अगर आपका टेम्परेचर ठंडी में भी 37 के बजाय 35 हो गया तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो गए ना। नहीं, ये तो 30 टेम्परेचर बाहर -10, -20 इसलिए मेरा 35 हो गया, कोई बात नहीं, इसलिए मेरा टेम्परेचर 92 हो गया 98 के बजाय, चलेगा? नहीं चलेगा ना। अच्छा बाहर है 50 है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो 37 यानी 30 कोई बात नहीं, 37 है तो क्या हो गया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर क्या हो गया 39 हो गया, 106 हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना? बाहर तो 115 है ना, तो मेरा तो 106 ही हुआ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है? फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता? तो हमारे बॉडी का एक्यूरेट रहता है, तो अंदर वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल रूम में लगा हुआ है ना। और फिर हमारी जो है यहाँ पर जो हमारी पांचों कर्मेंद्रियाँ हैं ना, पांच कर्मेंद्रियाँ ना हमारी, कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, स्किन, ये जो बाहरी स्किन है हमारी और अंदरूनी स्किन है, अंदर में अंदर सांस की नाली में स्किन है अंदर की, हमारे पेट में स्किन है अंदर की, है ना, हमारी जो आर्टरीज हैं खून की नसें हैं आर्टरीज और वेंस, उनके अंदर भी एक स्किन होती है, खून बहता है ना उनके अंदर, उसके भी अंदर स्किन है, तो उसका फंक्शन भी है ना। तो ये पांच कर्मेंद्रियाँ हैं, है ना। अब उसको पता है जैसे हमारे अंदर फेफड़े में, फेफड़ी नाली में स्किन है हमारी, हाँ एक करनाल वाले साइंटिस्ट हैं जी, तो हमारी जो अंदर की स्किन है फेफड़े में जो स्किन है अंदर की जो लाइनिंग है, उसको पता है ऑक्सीजन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है, वो सेंस करती है, जैसे हमें पता है ठंडा गर्म क्या है, ऊपर वाली स्किन से क्या पता, ठंडा गर्म पता लगा है ना, और कैसी कुछ फीलिंग्स आई तो पता लगती है, पर अंदर की स्किन में क्या क्या सेंसेशन है, सांस की नाली में कौन सी सेंसेशन सेंसेशन है, उसको पता है ऑक्सीजन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है ना, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, उल्टा नहीं कर लेती, उल्टा भी कर ले क्या, वो सारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है ना, नॉर्मल हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड तो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को और अंदर अंदर डाल ले और ऑक्सीजन को खून में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे, तो फिर तो सांस का असर क्या होगा, आदमी मर जाएगा, नहीं तो वो सेंस है ना अंदर, राइट। ऐसे हमारी हार्ट की आर्टरीज में क्या बहता है, खून बहता है, खून में LDL बह रहा है, कल बताया होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बहता है, तो उसको पता है कि मुझे बैड को अंदर नहीं लेना है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना, ये आपके साथ वाले कर्नल साहब, तो बैड कोलेस्ट्रॉल अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना, तो बैड को मुझे और बैड गुड वाला कभी अंदर नहीं जाता है, बैड वाला ही अंदर जाता है, और बैड वाला भी कब अंदर जाएगा, उसके लिए भी कुछ कारण है, जब स्किन में सेंस खत्म हो जाएगी ना उस वाले स्किन में, तो अंदर जाएगा, जैसे फेफड़े अगर हमारे खराब हो जाए बीड़ी पी पी के सिगरेट पी पी के, तो क्या होता है, तो बॉडी क्या करने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करने लग जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है ना। हमने बीड़ी सिगरेट पी के क्या किया, तम्बाकू से क्या किया, हमारी सेंस खराब कर दी हमने, सेल्स के अंदर की सेंस जो थी ना, अंदर की लाइनिंग की सेंस खराब कर दी, सेंस खत्म हो गई, अब क्या किया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के बजाय क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर रिटेन करना शुरू कर दिया, अंदर ही रखना शुरू कर दिया, फिर सांस नहीं आता, बेहोश हो जाते हैं, सांस का सिस्टम फेल हो गया, तो इस तरह से हमारे अंदर बॉडी में सिस्टम बने हुए हैं ना, अंदर की स्किन है, तो पांच हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, तो इनका कंट्रोल कैसे चलता है ना, वो हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा लोअर ब्रेन है उससे हमारी क्या होता है, पहली नर्व निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, नाक को, उसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, नाक के लिए है, पहली सेंस इंसान की कौन सी है, आँख नहीं है, पहली सेंस कौन सी है, नाक है, ऑल्फैक्टरी है ना, ये हमारी सूंघने की नर्व। सेकेंड नर्व जो है हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये हमारी देखने की नर्व है, हमें देखने की नर्व है ना, हम देखते हैं ना, छोटी हमारी पुतली है ना, छोटी बड़ी करने के लिए ना दिखाई देता है। और फिर तीसरी चौथी और छठी जो नर्व है, ये जो तीन नर्व है, ये आंखों को ऊपर नीचे घुमाने के लिए, ऊपर नीचे इधर 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 है ना, टेढ़ा भी देखते हैं ना कई बार, हम टेढ़ा देखना हो, इधर देखना हो, उधर ऊपर देखना हो, ऐसे देखना हो, है ना, आंखों को घुमाते हैं ना, भरत जैसे भरतनाट्यम में घुमाते हैं ना, ऐसे हम सबको घुमानी आती है ना, तो ये हमारी तीन नर्व इसको घुमाती हैं। जो पांचवी नर्व जो है हमारी, वो क्या है, उसके दो पार्ट है, एक तो हमारा है चेहरे पे सेंसेशंस, चेहरे पे किसी ने छुआ, किस भाव से छुआ, ठंडा गर्म, कैसी प्यार से छुआ, गुस्से में छुआ है, किस भाव से उसने छुआ, यहाँ तक भी ना, आशीर्वाद दे रहा है कोई, किस भाव से दे रहा, क्या क्यों हमारे सिर पे हाथ रख रहा है ना, वो फीलिंग भी आपके अंदर महसूस हो सकती है, यहाँ तक गर ना, ये पूरा एरिया, ये पांचवी नर्व से उसका कनेक्शन, ठंडा गर्म और कैसा भी टेम्परेचर, कैसा भी टच होगा ना, कोई किस भाव से टच करता, उसकी पूरी सेंसेशन चेहरे पे पांचवी नर्व से। उसका दूसरा पार्ट खाना चबाने का काम आता है, हम खाना चबाते हैं ना, वो हमारा मैस्टिकेशन का काम करता है। सातवीं नर्व जो है हमारे, किसकी नर्व है सातवीं नर्व? हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन की नर्व है। हमारे जो भी चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है, हम मुस्कुराते हैं, हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, जल्दीबाजी में है, चिंता में है, गुस्से में है, वो सारे एक्सप्रेशन चेहरे पे दिखाई देते हैं, है ना। कब आपको आश्चर्य लग रहा है किसी बात का, तो वो चेहरे पे दिखाई देता है, नहीं कुछ भी बात हो जाए, है ना, आपका चेहरे पे उसकी उसकी मसल्स है, बकायदा उसकी मसल्स है, वो मसल एक्टिव होती है तो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। वो मसल एक्टिव हो गई, मुस्कुराने की मसल है, जाइगोमेटिक समझ, मेजर और माइनर, है ना, वो आपकी वो सिकुड़ेंगी ना तो दिखाई देगा आप मुस्कुरा रहे हो, है ना। अगर वो नहीं सिकुड़ी तो क्या हो जाएगा, जैसे पैरालिसिस का अटैक आता है, वो मसल पैरालाइज हो जाती है, तो मुस्कुराओ तो पता नहीं लगता है मुस्कुरा रहे हो क्या कर रहे हो। पार्किंसनिज्म होता है, सारी मसल स्टिफ हो जाती हैं, तो आपका मास लाइक फेस हो जाता है, पता नहीं लगता आप क्या कर रहे हो, उदास हो, दुखी हो, क्या हो, कुछ भी नहीं पता लगता। मुस्कुराओ तो पता नहीं लगता, एक्सप्रेशन ही सारे खत्म हो जाते हैं, है ना, पार्किंसनिज्म में ऐसा होता है। तो मतलब बीमारियों में वो बीमारी ऐसे ऐसा ऐसा चेहरा हो सकता है, किंतु अदरवाइज आपके मन में जो भी विचार है, जो भी भावना है, जो भी आपका एटीट्यूड है, दृष्टिकोण, नजरिया है, आपके मन में कोई अंदर याद ही आ गई, पुरानी बात याद आ गई, वो भी चेहरे पे दिखाई देगी। आपकी आदतें भी हैं, कैसी आदतें हैं, खाने की, पीने की, अच्छा खाना, अच्छा खाना आ गया, है ना, कोई आपके टेस्ट का आ गया, तो आपने आपके चेहरे पे दिखाई दे जाएगा, अच्छा आया कि बुरा आया, है ना, आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, आपको खराब लग रहा है, क्या बेकार खाना आ गया, तो आपको चेहरे पे आ जाएगा, है ना, तो क्या क्या भाव आपका, ना आपका भाव आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो मन का पूरा एक्सप्रेशन कहाँ आता है, चेहरे पे आता है, और जो चीज आप बार बार करोगे वो क्या हो जाएगा, वो मसल्स मोटी ताकतवर होती जाएगी। जैसे आप हाथ की एक्सरसाइज करो ना, वजन उठा के ऐसे करो या वेट लिफ्टिंग करते ना, तो ये मसल्स पावरफुल हो जाती हैं, शक्तिशाली। हाथ की करो तो हाथ की मसल्स पावरफुल हो जाती है, बाइसेप्स हो जाती हैं। टांग की करो तो ये हमारी ये मसल्स पावरफुल हो जाती है ना, देखते ना, आपने देखा होगा, टी वी पे दिखाते हैं ना, वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, एक एक मसल अलग अलग दिखाई देती है। आपकी दिखाई देती है क्या? आपकी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारी जो भी, मान लीजिए आप रोज उदास ही रहते हो हर बात में, तो क्या होगा, आपकी उदास वाली मसल्स ही पावरफुल हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, अब मरोगे ना, जब आप जिस दिन मरोगे तो उसके बाद भी क्या दिखाई देगा, हैं, कि मरने के बाद भी उदास ही दिखाई देगा चेहरा, नहीं। और आप मुस्कुराते रहो हमेशा, तो क्या होगा, आपकी मुस्कुराने की मसल्स ही मोटी मोटी हो जाएंगी। आप अगर गुस्सा भी करोगे ना, बाई चांस कभी कर भी लोगे ना, तो क्या होगा, तो भी लगेगा मुस्कुरा रहा है ना, सो रहे हो ना तो भी दिखाई देगा मुस्कुरा रहा है ना, और मर भी गए बाई चांस तो क्या हो जाएगा, लगेगा अभी मुस्कुरा रहा है ना, ठीक है। और इंसान की क्वालिटी कौन सी है मुझे बताओ, इंसान का बेस्ट डेकोरेशन कौन सा है बताइए, है ना, क्या है, मुस्कुराना। कोई जानवर मुस्कुरा सकता है क्या, जंगल का राजा कौन है, शेर, है ना, वो मुस्कुरा सकता है, हाथी मुस्कुरा सकता है, कोई चिड़िया, तोता, कोई भी चीज़, कोई भी मोर मुस्कुरा सकता है क्या, डांस तो कर सकता है किंतु मुस्कुरा नहीं सकता है। कोई भी इंसान के अलावा कोई भी जानवर, पक्षी, मछली मुस्कुरा सकती है क्या, कोई भी नहीं मुस्कुरा सकता। तो इंसान की पहचान ही क्या है, क्या है बोलो, कितना भी दुखी होता है ना आदमी, बीमार अस्पताल में लेटा हो ना, कोई मिलने आए तो क्या करता है आदमी, बीमार आदमी भी क्या करके दिखाता है, कोशिश करके दिखाता है मैं मुस्कुरा रहा हूँ ना, मतलब इंसान की पहचान ही क्या है, मुस्कुराना। क्या ख्याल है, ठीक बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, इंसान की क्वालिटी ही पहचान है। आप कभी भी कोई मिले, आप कितना मन से उदास हो तो भी आदमी थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखाई देता है ना, अंधेरे में थोड़ी लाइट दिखाई देगी, है ना, पर कितना भी दुखी होगा तो भी एक बार तो मुस्कुरा के, थोड़ा हल्का सा मुस्कुराए जाए, मुस्कुराएगा तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, क्या बनना चाहते हो आप, कैसे मरना चाहते हो, चलो है ना, मरने की इच्छा पूछता हूँ आपसे, कैसे मरना चाहते हो। लोग तो जीने की बातें करते हैं, मैं मरने की बात कर लेता, क्योंकि आप मरने से डरते हो ना सभी, तो इसलिए जो बात जिससे डरो वही कर लेनी चाहिए, है ना, नहीं, तो बताइए तो क्या करना चाहेंगे? मुस्कुराते मुस्कुराते जाएंगे ना। वो तो कल मैंने परसों आपको लाइन सुनाई थी ना, कौन सी वाली, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? हाँ, मुकद्दर का सिकंदर। क्या क्या मुकद्दर का सिकंदर बनना ना आपको? नहीं तो आपको मतलब ये आदत डाल लो आपसे अभी से। टाइम योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना, 11:18 है ना, ठीक है, अभी से शुरू कर दो, है ना, मुस्कराना शुरू कर दो और लगातार मुस्कुराओ, है ना। तो यहाँ से जाते जाते जब जाओगे ना, जिस दिन तुम्हारा चेहरा ही हो जाएगा, है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, घर वाले कहेंगे इसको क्या हो गया, तो सारा दिन उदास रहता था, सारा दुखी 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 राम था ये, तो इसको प्रोफेसर दुखी राम कहते थे, ये सुखी राम कैसे हो गया, है ना। नहीं तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, है ना। नहीं तो हमारे पास सामने ना शांतिवन के सामने एक शीशा मिलता है छोटे वाला ना, बंदर शीशा कहते हैं उसको, इतना सा है ना, गोल गोल होता है, 5 रुपये का ही मिलता है। कहो तो मंगा दूंगा आपको, जिन जिनको आवश्यकता हो मंगा देता हूँ, जेब में रखो और हर 15 मिनट निकालो मुस्करा लो, 15 मिनट निकालो मुस्करा लो, है ना। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना। आगे क्या है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाएंगे, वो तो पत्थर पे निशान पड़ आपके चेहरे पे तो पड़े पड़े हैं ना, 5 दिन में ही पड़ जाएंगे, ठीक है, करेंगे, मंगाओ। नहीं तो आपस में एक दूसरे को याद दिला दो ना, क्या भाई ना मुस्कुराओ ना, शर्मा क्यों रहे हो, है ना। आपस में एक दूसरे को अटेंशन दिला दो कि मुस्कुराओ, शर्माओ नहीं, है ना, करेंगे ऐसे। हाँ, मूछ वालों को ज़्यादा मुस्कराना पड़ेगा ना, क्योंकि मूछ में ही ढक जाता है ना, मूछ में मुस्कराना ना। नहीं चल, तो ये आपको, ये है हमारी 7वीं नर्व ना, तो ये हमारा इसको फिर 8वीं नर्व का भी 2 पार्ट है, एक सुनने का पार्ट है और दूसरा 3D बैलेंस, 3D बैलेंस, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे आप चलते हैं ना, तो आपके पैर टिकते हैं ना। अगर ये खराब नर्व खराब होगी तो क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे, गिडीनेस होगी, है ना। इससे जब चक्कर आते हैं तो हम यूजली कान के डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए ना। 8वीं नर्व, 9वीं नर्व जो है बोलने की नर्व है, 10वीं नर्व खाना तो चबा लिया, खाना निकलेंगे कैसे, ये 10वीं नर्व इसमें मदद करती है। जो 11वीं नर्व है वो इमरजेंसी ब्रेक है, इमरजेंसी ब्रेक समझते हैं, मान लो आप खाना खा रहे हो और खाना खाते हाथ में भी खाना है और मुँह में भी खाना है, कोई क्या भाई और लेंगे क्या भाई साहब, तो क्या करोगे, है ना, तो गर्दन ना हाँ या ना करने के लिए, तो ये इमरजेंसी ब्रेक है। ये दो मसल्स को स्टिमुलेट करंट देती है, एक तो स्टर्नोक्लियोडोमास्टर्ड यहाँ मसल्स होती है और एक पीछे की तरफ ट्रैपेजियस, तो हाँ ना या हाँ या ना करने में ये इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करती है, ठीक है। और 12वीं नर्व जो है हमारे पास क्या है, ये जीभ की नर्व है, ठीक है, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में आ जाती है ना, रीढ़ की हड्डी में, फिर आगे कमर, इस गर्दन में 8 नर्व है, ऊपर वाली कमर में 12 नर्व है, उसके बीच वाली कमर में 5 है, और उसके नीचे 5, और सबसे नीचे लास्ट में जाके 3, है ना। तो 33 से कितनी है, 12, 8, 20, 20 और 10, 30 और फिर 3, 33, 33 बाहर है और 12 अंदर है, दिमाग के अंदर 12 है और 33 बाहर है, और इनका जाल पूरे शरीर में फैला हुआ, पूरे शरीर में फैला हुआ, ये 80,000 अरब कोशिकाओं में सब में इसका करंट गया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, और ये फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारा हायर ब्रेन है, ये हमारा जो है ना यहाँ तक हमारा हायर ब्रेन है, और हमारे हायर ब्रेन में एक पावर है, इसको हम एशिया की पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, एशिया। ये सेकंड लाइन वाले दोबारा समझ लें, क्योंकि मैकेनिज्म हमको अप्लाई करना है, खाली हमको इसको नहीं रटना नहीं मारना है, लाइफ में रोज यूज़ करना है ना, लाइफ की रोज चीज यूज़ करने की चीज़ें। और ये जो है हमारा नीचे वाला पार्ट जो है, ये हमारा ये जो पार्ट है इसको लोअर ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, लोअर ब्रेन कहते हैं। और लोअर ब्रेन जानवरों में भी डेवलप्ड होता है, किंतु हायर ब्रेन जानवरों में नहीं होता है, सिर्फ इंसान में होता है। और हर इंसान जो है उसका फर्ज क्या है, उसके पास जो एशिया की पावर है, एशिया की पावर सिर्फ इंसानों में है, हर काम करने से पहले एशिया लगाओ और फिर कर्म करो, एक्शन में आओ, ठीक है। और लोअर ब्रेन का काम क्या है, जानवर क्या करते हैं हमेशा, जानवर क्या करते हैं, कुत्ते को छोड़ो क्या करता है कुत्ता, काटेगा या भूकेगा, गधे के पीछे जाकर खड़े हो जाओ क्या करेगा, हाँ ऐसे टांग पीछे मारेगा ना, दूसरे दुलत्ती कहते हैं ना, ऐसे मारेगा ना भाई, पीछे को मारेगा, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई बड़ा अफसर खड़ा हो जाए उसको भी मारेगा नहीं मारेगा। इंसान को, इंसान क्या करता है, इंसान के बराबर कोई उसका नौकर उसे कुछ बोल दे तो क्या होता है, डांट मारेगा, उसका कुलीग भी होगा तो उसको भी कुछ तो नाराजगी महसूस कराएगा, उसका बॉस करे तो उसका बॉस से कह दे यू आर ए फूल, आप बेवकूफ हैं, तो क्या करेंगे, और क्या बोलेगा उसका, क्या बोलेगा बता, डॉक्टर साहब क्या करेगा, मतलब उसका बॉस बोलता है, उसको जिसने नौकरी दी उसको बोलता है तुम यू आर ए फूल, बॉस बोल रहा है क्या करेगा, सॉरी सर नहीं यस सर आप गधे हो, यस सर है ना, नहीं करेगा क्योंकि अगर वो उसने कुछ किया तो क्या होगा, उसकी नौकरी जाएगी, ये समझ है कि तू गधे को कुत्ते को, कुत्ते का असर फर्क नहीं पड़ता ना, कोई भी हो उसको नौकरी की, नौकरी करते ही नहीं किसी की परवाह नहीं है उसको ना, परवाह नहीं है क्या करेगा, मतलब चाहे मालिक हो चाहे उसको खाना दे नहीं दे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी कुछ कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे ना, बोलो हमें मैनेज करने प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए इंसान के पास ये एशिया लगाने की पावर है, और जानवर के पास, जानवर सिर्फ क्या करते हैं, जानवर रिएक्शन करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और हमारे अंदर एक सिस्टम बना हुआ है सभी के अंदर ना, हाइपोथैलेमस से निकलता है वो सिस्टम, एक है हमारे जो कल राहुल ने बताई होगी, मैं थोड़ा सा और इसको गहराई से बता देता हूँ, ये जो है हमारे अंदर एक सिस्टम है जो इसको, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, जो कुछ भी हम करते हैं ये एक्चुअली भगवान का सिस्टम बना हुआ है, पाप और पुण्य का सिस्टम है ना, ये इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ऑटोनॉमिक माना जो ऑटोमेटिक है, उसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, जैसा कर्म करोगे जैसा सोचोगे उसका असर आपके ऊपर होगा ही होगा, जो मैंने गीत बनाया ना शुरू में, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, वो आपने कर लिया ना आपका उस पर कोई फिर कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। तो आपकी सोच के अनुसार अगर वो सोच नेगेटिव है या डैमेजिंग है, खतरा है, अलार्म, राहुल कल जो बोल रहा था अलार्म रिस्पॉन्स कुछ भी गलत हो गया, मान लीजिए अभी यहाँ कोई सांप कोबरा आ जाए, यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे इधर से निकल के ऐसे घूमता ऐसे ऐसे करके आ जाए, क्या होगा, क्या होगा, वो एक से ज़्यादा तो काटेगा नहीं, एक ही को काटेगा है ना, आप अभी 150, 200, 250 बैठो, एक को काटेगा तो फिर क्या, आप क्या करोगे, और आगे वाले काटेगा, पीछे वाले का थोड़ा काटने जाएगा, तो मतलब आपको आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे वाले को उठना चाहिए, और जिसकी शक्ल पसंद आएगी उसको काटेगा है ना, तो सबको तो नहीं काटेगा, तो मतलब आप सब सारा क्या होता है, सबके अंदर आराम से सारी नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब मान लीजिए भूकंप आ जाए तो क्या होगा है ना, तो ये जैसे लाल तार या सिंपैथेटिक सिस्टम, ये आपकी मतलब सिचुएशन के साथ सिंपैथी जाहिर करता है ना, एक तरह का अलार्म रिस्पॉन्स है। और दूसरा एक सिस्टम और है, वो है हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, ये हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम है, इजी कर देता है आपको है ना, इजी कर देता है कि अब आराम से, जैसे पता है कि कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब डॉक्टर साहब देख नहीं रहे, मेरे को हमारी तरफ देख नहीं रहे, इधर की तरफ देख रहे, उधर की तरफ देख के बाद आराम से सो जाते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना, मैं देख रहा हूँ तो पता है अलार्म रिस्पॉन्स रेडी है ना, तुम मुझे देखते ही बोलेंगे ना, सुना आपने, तो ये जो है मतलब एक तरह का अलार्म रिस्पॉन्स है ना, और एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है ना, रिलैक्स सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। जब लाल तार एक्टिव होती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आती है, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है, आर्टरी सिकुड़ जाएंगे, नसें सिकुड़ जाएंगे, कोलेट्रल बंद हो जाएंगे, खून गाढ़ा हो गया, सप्लाई मेन जो सप्लाई वो कम होती जाएगी। और जब आप रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, खून पतला हो जाएगा है ना, और क्या हो जाएगा, कोलेट्रल्स साइड में से चैनल खुल जाएंगे, अगर आर्टरी ब्लॉक भी है साइड में चैनल वो भी खुल जाएंगे, खून का जाना शुरू हो जाएगा, एकदम अच्छा लगने लगेगा आपको, रिलैक्स हो जाएंगे, छाती में दर्द हो खत्म हो जाएगा। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है तो उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस आते ही आपने देखा भी होगा, जब जल्दी कर लेते हो, चिंता कर लेते हो, गुस्सा कर लेते हो, जल्द कुछ भी ऐसा आता है तो क्या होता है, छाती भारी भारी लगने लगती है ना। और जब रिलैक्स होते हो तो क्या होता है, ये नीचे से उठाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी रिस्पॉन्स अंदर से आती है। और इन दोनों के बीच में एक और चीज़ है, वो है, उसको कहते हैं हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जागृत रहने का सिस्टम, ठीक है। और तीनों के तीनों फाइबर्स हमारी हर जगह गए हैं, पहली नर्व में भी गए, दूसरी में भी गए, आँख में भी गए, नाक में भी गए, कान इधर भी गए, इन तीनों मूव करने में भी, चेहरे पे भी गए, है ना, छठी इसमें सातवीं नर्व में भी है, आठवीं में भी है, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, हर जगह है, गर्दन में भी है, नीचे भी, कमर में भी गए, सारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये तीनों नर्व हर नस में गई हैं, हर नर्व में गई, मतलब सारी की सारी बॉडी में ये रिस्पॉन्स है किस चीज़ की, तीनों चीज़ें हर नर्व में गई हुई हैं। मतलब कुछ भी, कहीं से भी, किसी भी सेल से अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, है ना, या उसके हिसाब से आपका ब्लड सिस्टम, हार्ट रेट का सिस्टम, सांस का सिस्टम चालू होगा, दिमाग की सोच चालू होगी, उसमें चिंता, गुस्सा, उदासी, डर उसके अनुसार से बनेगा, ठीक है। दुख जो आएगा या दर्द होगा या तकलीफ होगी या सुख मिलेगा उसके हिसाब से चलेगा, और आपके जागृत भी उस अनुसार से रहेंगे, सोएंगे या जागेंगे इस आधार पर, इसी आधार पे दोनों के बैलेंस से होता है। कौन सी चीज है, अगर आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स ज़्यादा आ गई, जल्दी थक जाओगे, आलस अलबेलापन जल्दी आएगा, आप थक जाओगे, केयरलेस हो जाओगे, फिर एकदम परवश हो जाओगे, नींद आएगी ज़बरदस्त तरह से, और आप रिलैक्स रहते हो, है ना, रिलैक्स रहते हो, इजी रहते हो, और स्ट्रेस का चैलेंज और हर चैलेंज को भी रिलैक्स होकर फेस करते हो तो आप जागृत रहोगे, ठीक है। आप जिसमें जागृत रहना उसमें जागृत रहोगे, और जिसमें सोना है उसमें सो जाओगे, नींद भी बहुत बढ़िया आएगी और जागृत भी बहुत बढ़िया रहोगे, है ना। अभी क्या होता है, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती है और दिन में जागृत भी ढंग से नहीं रहते हो, है ना। एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्यों होते हैं एक्सीडेंट, रात को नींद अच्छी आती नहीं, सपने आते रहते हैं, है ना, तो फ्रेश होते नहीं सुबह, और गाड़ी सुबह चलानी है, ऑफिस जाना है, तो झपकी आ जाती है, नहीं, क्या ख्याल है, क्लास में बैठते हो झपकी आ जाती है ना, कई मीटिंग में बैठे हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी झपकी आ जाती है ना, दिखाते ना लोगों को, मिनिस्टर्स को भी मीटिंग में नींद आती है जी, हैं जी, पार्लियामेंट में भी सो जाते हैं ना, शोर के बीच में सो जाते हैं ना। तो भाई ये जो सारी जो रिस्पॉन्सेस, तो ये हमारे अंदर इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या लगा हुआ है, आप बताइए आत्मा को कहाँ बैठना चाहिए, ड्राइवर जो है ना, मतलब ड्राइवर कहाँ बैठना चाहिए, ड्राइवर कहाँ बैठता है कार में, ड्राइवर कहाँ बैठता है, कहाँ बैठता है, हाँ, यहाँ हायर बेल्ट में बैठ, यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ पर, इधर कहाँ बैठना चाहिए, मतलब आर क्या ड्राइवर को इंजन के अंदर बैठना चाहिए, नहीं, कहाँ बैठना चाहिए, जहाँ कंट्रोल हो वहाँ बैठना चाहिए ना, कंट्रोल जहाँ सब कुछ है, जहाँ पर देखो स्टेयरिंग भी होता है, ब्रेक भी है, क्लच भी है, लाइट भी है, हॉर्न भी है, पानी भी है ना, खिड़की खोलने का बंद करने का कंट्रोल भी है, नहीं, वहीं बैठते हैं ना। तो ये जो है, तो ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पे ड्राइवर मना आत्मा को बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए बताओ, बोलो कहाँ बैठना चाहिए, हैं, हाइपोथैलेमस कंट्रोल रूम है, यहाँ पे ही बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है, यहीं पर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और यहाँ पर ये दोनों गर्म ठंडी तार भी लगी हुई है, जागृत रहने का सिस्टम भी लगा हुआ है, तो आत्मा की सीट ये है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, जहाँ न्यूरोवैस्कुलर बंडल होते हैं ना, वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर सीट, वहाँ ऐसे इतने एक्टिव नर्व हैं, डेवलप्ड हाईली डिफ्रेंशिएटेड नर्व हैं, जो कि इसको सेंस कर लेती है, जो आत्मा की एनर्जी को सेंस करने के, माने ऊपर से पहाड़ से पानी गिरता है, माउंट आबू में पानी, अभी झरने चालू हो गए, बरसात हुई ना रात में, तो झरने आज बहुत अच्छे चल रहे हैं ऊपर ना, तो झरने चालू हो गए। वैसे सीन है जहाँ 500 फुट से पानी गिरता है, छठे 600 फुट से पानी गिर रहा, लगा ऐसे नीचे गिर रहा सीधा ही पहाड़ से, तो वहाँ बिजली बन रही है क्या? नहीं बन रही ना। कि तू जो डैम है, नर्मदा डैम है, भाखड़ा डैम है, वहाँ कितनी हाइट से पानी गिरता है? 390 फुट से पानी गिरता है। नर्मदा का 390 है शायद, भाखड़ा का उससे भी कम है ना, तो उतने फुट से पानी गिरता। तो नीचे क्या है? नीचे टर्बाइंस हैं, टर्बाइन चालू होती हैं, उससे बिजली पैदा होती है, डायनमो साथ में होते हैं, डायनमो बिजली स्टोर होती है, स्टोर होके वहाँ से हाई टेंशन वायर्स 22,000 वोल्ट की तारें चलती हैं, फिर आपके स्टेट में पहुँचती हैं, प्रदेश में पहुँचती हैं, फिर वहाँ से शहरों में 11,000 वोल्ट की तारें जाती हैं, फिर वहाँ से आपके घरों, आपकी घर गलियों में, मोहल्ले में 1100 वोल्ट की तारें आती हैं, और फिर आपके गलियों में, आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, है ना? पता है नहीं पता इस बात का? आपकी पॉकेट में अगर डेवलप्ड जैसे रोहिणी है या और एरियाज हैं, वहाँ पॉकेट पॉकेट होती है, उनमें वो लगी होती है, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो फिर उसको 5 गुना कम कर देते हैं, 220 वोल्ट आपके घर में वो लाइट आती है। उस लाइट से आप क्या करते हो? उस लाइट से आपका सब कुछ चलता है ना, क्या क्या चलता है, पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट और एसी और हीटर, इंडक्शन का इंडक्शन प्लेट है ना, और क्या क्या चलता है, प्रेस है ना, फोन, और क्या चल रहा है ना, जो कुछ भी देखो तो आप, चाहे वॉशिंग वॉश कपड़े धोने हो, कुछ भी करना हो, सारा काम चल रहा है ना। तो ये जो जगह ऐसी जगह जहाँ पर आत्मा के अंदर जो एनर्जी निकल रही है ना, आत्मा के अंदर कौन सी एनर्जी निकल रही है? आत्मा के अंदर पहली एनर्जी है कि सत्य की समझ, मैं कौन हूँ, जो मैं हूँ अविनाशी है, सदा रहने वाला है, मरने वाला नहीं है। सबसे बड़ा डर इंसान को क्या होता है? मरने का डर। दूसरा बुढ़ापे का डर। तीसरा कौन सा डर? बीमारी का डर। चौथा डर गरीबी का डर। ये चार डर सबके लिए है, सबको कॉमन है। मुकेश अंबानी को भी कौन से डर है? कौन कौन सा? मरने का डर है, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर और गरीब होने का डर। गरीब माना मेरा बिजनेस खराब नहीं हो जाए, जैसे मेरा, मैं भी अनिल अंबानी जैसा नहीं बन जाऊँ, है ना? अनिल अंबानी क्या अमीर है, गरीब है? हाँ जी, अमीर है क्या? अरे कंपैरिजन नहीं, वो तो अब कर्जे में है ना, उसको कितना कितना कर, 1,000 करोड़ उसके ऊपर कर्जा है ना, तो उसको देना है, लेना थोड़ी ना किसी से, तो उसका तो कर्जा है, वो तो गरीब आपसे भी ज़्यादा गरीब है ना? क्या ख्याल है, गरीब है अमीर है? हैं जी, एसेट इतने नहीं है जितना जितना उसके ऊपर कर्जा है, अभी सारे बेच दे तो भी नहीं मिलेंगे उसको इतने ना, कहीं भी लगाए ऊपर, मतलब कहीं ना, मतलब पानी में काफ़ी चले गए, है ना? तो मतलब ऐसा हालत है ना, तो हर आदमी को गरीब होने का डर होता है, गरीबी का डर होता है, या पैसा लूटने का डर होता है, पैसा कमज़ोर हो जाने का डर होता है ना, हर एक आदमी को होता है। तो ये चार डर सबके लिए कॉमन है। और अंदर क्या, आत्मा क्या कह रही है? आत्मा जो एनर्जी है, आत्मा कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, कोई एटम तो नहीं है, एटम से भी फाइन है, आँखों से देख नहीं सकते, कंप्यूटर से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, कोई मशीन उससे देख नहीं सकते, एनर्जी है। जैसे एनर्जी को हम देख नहीं सकते, ऐसे उसको देख नहीं सकते। तो वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है, ऐसा पॉइंट ऑफ एनर्जी है जिससे पहली एनर्जी क्या निकल रही है? सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, है ना? मैं कौन हूँ, जो आपने कल से बात करें, मैं कौन हूँ ना, दादी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, और भी हमने, और भी जो यहाँ मेन जो मतलब समझ है, जो पहली समझ है, मैं कौन हूँ, जो हम अपने आप को समझते आए, देह समझते आए, डॉक्टर समझते आए, मेल समझते आए, फीमेल समझते आए, माँ बाप समझते आए, पति पत्नी समझते आए, वो हम नहीं हैं। हम कौन है? हम देह नहीं, स्थूल देह ने स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, राइट? मैं निकल जाऊँ तो ये शरीर कुछ भी नहीं है, किसी काम का भी नहीं है, एक पैसे का भी नहीं है, है ना? मैं दिल्ली में जब प्रैक्टिस करूँ तो मैं 3,000 रुपये पर पेशेंट फीस लूँ, है ना? मेरे साथी जो है 3,000 रुपये पर पेशेंट फीस लेते हैं, है ना? और यूजली 5 से 7 मिनट ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, है ना? तो मैं फीस लूँ, अभी मेरी फीस की, मेरी इतनी वैल्यू है, कि तो अगर मैं आत्मा निकल जाऊँ तो फिर कितनी वैल्यू है? शरीर में से निकल गया फिर कितनी वैल्यू है मेरी, कितनी वैल्यू बताओ? है जीरो नहीं, नेगेटिव है। जलाने के पैसे अलग लगेंगे, 10,000 रुपये तो लग जाएंगे, उसे नहीं लगेंगे। नेगेटिव है, पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना। तो मतलब ये जो आत्मा की जो ये जो एनर्जी जो ना ये चला रही है इसको, हर एक चीज को, हर एक चीज की वैल्यू किस कौन कौन बना रहा है इसकी वैल्यू। कोई मुझे गुलदस्ता देता है, कोई मुझे कुछ करता है, कोई मुझे कुछ करता है, एरोप्लेन की टिकट भेजता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो कोई कौन वैल्यू बना रही है? आत्मा की वैल्यू हो रही है कि शरीर की वैल्यू हो रही है? अब मेरे मरने के बाद मैं आत्मा निकल जाऊँ तो शरीर को भेजेंगे टिकट ले आ जाओ तुम, आप अमेरिका में आ जाओ, अमेरिका में विजिट करके जाओ, आप भाषण करके जाओ, बोलेगा कोई? कोई भेजेगा टिकट? कोई नहीं भेजेगा। भेजेंगे? कोई नहीं भेजेगा ना। तो वैल्यू किसकी है मैदान साहब, किसकी वैल्यू बोलो? आत्मा से वैल्यू है शरीर की भी ना, और हम क्या समझे बैठे? मेरी वैल्यू है ना, मेरी नाक की वैल्यू है ना, मेरी नाक की वैल्यू है, मेरे बालों की वैल्यू है, इसको कलर कर लो भाई, है ना, मेरी वैल्यू बनेगी, बाल कलर कर ले तो वैल्यू है, नहीं तो बाल से वैल्यू है क्या? सफेद बालों, काले बालों, गंजे हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता है ना, आत्मा की वैल्यू है, राइट। अब्दुल कलाम साहब थे, उनकी उनकी वैल्यू थी कि उनके शरीर की वैल्यू थी? शरीर तो उनका साहब, डायबिटीज थी, कितनी बीमारी थी, कितनी तकलीफें थी, शरीर ऐसे कमजोर सा शरीर था, कोई हाइट भी 6 फुट के नहीं थे, कितने फुट के थे? 5 फुट 4 इंच उनकी हाइट थी, है ना, कोई खास बात तो थी नहीं, कोई मसल्स भी नहीं थी, मैं देखा क्योंकि मेरा बहुत आना जाना था उनसे, बहुत फ्रेंडशिप थी, हम लोग साथ साथ बैठा करते थे, कई बार मैं वहाँ जाता था, दिल्ली में उनके घर था ना, उनका वहाँ पर था ना, जो राजा जैन के तो बाद में बना, उसके पहले जाता था जब वो DRDO के डायरेक्टर जनरल थे ना, तो कभी वो बहुत सिंपल पर्सनैलिटी थे, है ना, तो शरीर से वैल्यू नहीं थी, है ना, उनके सोच से, सोच की वैल्यू, आत्मा की वैल्यू थी ना, उस आत्मा की सोच कैसी थी, आत्मा की विजन क्या थी, सब लोग बहुत ध्यान सुनते थे, सारे काम छोड़ के सुनते थे, बहुत सिंपल व्यक्ति थे, है ना, तो वैल्यू आत्मा की थी, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है ना, सत्य की समझ, ABCD, इसको मैं ABCD कहता हूँ, ए फॉर आत्मा, बी फॉर भगवान, भगवान भगवान माना या बाबा, बाबा कह दो, हम यहाँ बाबा कह देते हैं, परमात्मा माना पिता, परमात्मा, भगवान शब्द कहाँ से आया बताओ, कौन बताएगा? वीरेंद्र सिंह आप बताओ, भगवान शब्द कहाँ से आया? भगवान कौन बताएगा? ये बहन जी कोने वाली, कई लोग सो रहे होते हैं फिर तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं ऐसे ताकि पता नहीं आँख खुलते ही ना, है ना, पता लग जाता है मुझे चलाके का ना कि नहीं, मैं गर्दन नीचे करके लिख रही थी, मैं सो नहीं रही थी, है ना, नहीं ऐसा भी कर हाँ जी, परम नाम से आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, भगवान शब्द 5 शब्दों से आया है, धर्मपाल जी क्या ख्याल है? भगवान शब्द जो 5 तत्वों से आया है, भा माना भूमि, गा माना गगन मतलब आकाश, वा माना वायु, आ माना आग और ना माना नीर, भगवान वो है जो इन 5ों तत्वों के कंट्रोल से बाहर है, 5 तत्वों के वश में नहीं है, राइट। और इन आत्मा क्या, आत्मा आत्मा परमात्मा क्या फर्क है? हम आत्माएं इस शरीर के वश में है, हम इन 5ों तत्वों के वश में है, ये 5 तत्वों से बना शरीर है ना, इसके वश में है, हम चाहे भी तो इसको छोड़ नहीं सकते, अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, आत्महत्या कर लो तो भी छूटेगा नहीं, सुना, हम इसके वश में है, और खाली शरीर के वश में नहीं है, इन 5ों तत्वों के वश में है, फिर क्या चाहिए? शरीर है, फिर खाना भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, नहीं चाहिए, गर्मी भी चाहिए, आग भी चाहिए, नहीं चाहिए, रह जाओगे ठंडे में? ठंडे में भी क्यों, रशिया में क्यों रह रहे हैं लोग, अमेरिका में क्यों रह, ठंडी जगह में क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ आर्टिफिशियल कूलिंग हीटिंग अवेलेबल है, हर रूम में, बाथरूम में भी हीटिंग अवेलेबल है, अंदर भी आप ऐसे ही घूम सकते हो अंदर घर में, क्योंकि हीटिंग है, टेम्परेचर ही 22-25 रहता है अंदर, कम्फर्टेबल टेम्परेचर रहता है, आप नॉर्मली ऐसे भी बनियान पहन के भी घूम सकते हो घर के अंदर, घर के बाहर, फिर आपके जो फॉयर है उसमें भी गर्मी है, फिर कार एकदम गर्म है, फिर आप बाहर जाओ तो गर्म, जहाँ भी जाओगे ऑफिस हर जगह गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर है, इसलिए आप जी पाते हो, अगर -30 में ऐसे जाओ तो वैसे ही मर जाओ, है ना, सुना आपने? तो मतलब हर चीज़ जो है वहाँ पर कंट्रोल्ड है, इसलिए तो ये जो है, मैं ए फॉर आत्मा, बी फॉर भगवान या बाबा, और सीफाना कनेक्शन संबंध, जो हमारे संबंध आपस में वो टेम्परेरी है, आ जा कल नहीं है, बदल सकते हैं। पति पत्नी का संबंध, माँ बाप का संबंध, बच्चों का संबंध, आ जा कल नहीं, सदा है क्या? सदा नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का संबंध सदा है। हमारे सर्व संबंध उनके साथ हैं। आरती में क्या गाया आपने, क्या गाया बोलो? आरती क्या गाते थे आप लोग? हाँ बोलो ना, शर्माओ नहीं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। यही गाया ना, कुछ और गाया? यही गाना गाया ना। तो हमारे सर्व संबंध उसके साथ है, और फिर कैसे, हर जगह है, हर समय है। आप बाथरूम में कुंडी लगा दो, आप बाथरूम में आप हो, अकेले हो, अब आपके साथ कौन है? भले घर में 10 लोग और भी हैं, अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए तो कौन है अंदर बाथरूम में? कुंडी लगा रखी है कि तू है, कौन है वहाँ पे? वहाँ भी भगवान आपके साथ हर संबंध से है। आप कहीं विदेश चले गए, वहाँ पर अकेले गए हो, कोई नहीं आपकी मदद वाला है, वहाँ भी आपके साथ हर संबंध से है। आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं, अगर उसको पहचान लो, उसके अनुभवी मूर्त बन जाओ, तो आपको कभी भी अकेलेपन की फीलिंग नहीं आएगी। हर संबंध से, हर समय आप, हर जगह आपके साथ, हर समय साथ है। 12 बजे हो, 1 बजे हो, रात में हो, किसी समय भी हो, आपके साथ है। तो संबंध, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। ये संसार रूपी नाटक, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और परमात्मा इस ड्रामा का क्या है? हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और अपनी हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% पार्ट प्ले किया है, अभी भी 100% पार्ट प्ले कर रही है, और आगे भी भविष्य में 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले हर आत्मा करेगी। खाली मैं नहीं, आप सब, आपके घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति, आपके माता पिता, भाई बहन, बिजनेस पार्टनर, सबके सब, इंक्लूडिंग एवरीवन। ये बात समझ में आई आपको? हमारे हर संबंध कैसे हैं? एक्यूरेट, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, और माना प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, और क्या है, और हीरो एक्टर भी है ना, मेन हीरो है ना, और फिर सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, अभी तक दिए, दे रहा है और देता रहेगा। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ कैसा हुआ है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? आपकी रोज इंसल्ट होती है, घर में भी, ऑफिस में भी, बोलो अच्छा हुआ कि अभी तक बुरा हुआ है? इतना सहज है क्या है? बोलो, आपको रोज गाली पड़ती है, घर में सुबह से गाली खा के जाते हो, वहां भी जाके गाली खाते हो, घर में आते हो, फिर रात को, शाम को फिर गाली पड़ती है, कोई आपसे संतुष्ट नहीं है, ना घर वाले संतुष्ट, ना ऑफिस वाले संतुष्ट हैं। ऐसे आपके साथ है, आप सुबह सुबह डांट खा के, डांट खा, अच्छा खाना बना के भी डांट खाती हो, है ना, सारा काम अच्छा करके भी, क्या बनाया तुमने? बनाना नहीं आता खाना, खा खा के क्या बनाते हो? अकल ही नहीं है बिल्कुल भी ना, सब कुछ करने के बाद भी, है ना, फिर घर में सारा दिन बच्चे आपको तंग करते हैं, और फिर शाम को आके पति फिर डांट मारता है, तो क्या है, इंसल्ट कर देते हैं ना, बच्चे इंसल्ट कर देते हैं। अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ अभी तक नहीं, अच्छा हुआ बुरा हुआ है? धोखा मिल रहा है, हर 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 लेवल पे धोखा मिल रहा है। अच्छा हुआ क्या अभी नहीं हुआ? बोलो, हाँ ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब माना, कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है बताओ? कर्मों का हिसाब किताब ये है कि आपने, मान लीजिए अगर 100 साल पहले गीत है ना, फिल्म का गीत है ना, कौन सा, 100 साल हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी है, रहेगा ना ऐसा, और एक गीत और भी है ना, 100 बार जन्म लेंगे, है ना, आगे क्या है, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, है ना, फिर भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हिसाब किताब पूरा करके ही छोड़ेंगे, है ना, नहीं, अगर 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपये उधार लिया था और 100 साल के बाद वो आपका बेटा बन के आ गया या पत्नी बन के या पति बन के या बिजनेस पार्टनर बन के आ गया, तो 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना होगा पता है आपको? 10 रुपये का ब्याज कितना होगा? 4,18,35,040 रुपये। ठीक है, अगर आपने 2 बार किसी की इंसल्ट की थी पिछले 100 साल पहले, अब इस दिन में कितनी बार इंसल्ट करेगा आपकी या करेगी? कितनी बार करेगी सोचो आप। 2 बार सिर्फ आपने 2 बार की थी, कितनी बार होगी? कम से कम 5,000 बार तो होगी, नहीं होगी? सुबह शाम होगी, पानी पी पी के होगी नहीं? इंसल्ट करना पानी पी पी के, दूध पी पी के करेगा नहीं? नहीं या करेगी? नहीं करेगी। अगर गाली दी थी तो दो गाली दी थी आपने पिछले जन्म में, अब कितनी होगी? कितनी गाली मिलेगी? धोखा दिया था कितना बार? एक बार धोखा दिया था, कितना बार धोखा मिलेगा अभी? तो ये कर्मों का हिसाब है। इसलिए जो हुआ अच्छा, ये हमें ये जब हम एबीसी समझ जाते ना, हम सब आत्माएं हैं, हम सब एक्टर्स हैं, वो कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ये हमें अब हीलिंग हो रही ना, परमात्मा मेरे साथ है, सागर मेरे साथ है। जब ये हीलिंग अंदर से हो रही है तो आप आपकी जो हुआ अच्छा, अब जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब परमात्मा मुझे मिल गया है और उसने ब्रह्मा के द्वारा मुझे क्या बना लिया? अपना बच्चा बना लिया। सुबह बताया ना बाला बहन ने, अभी हम ब्राह्मण बन गए। क्या बन गए? ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बन गए भैया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए। अब जो है हमारे क्या हो गया, अब हम अब बच्चे छोटे बच्चे ना, हम कहाँ बैठे हैं? हम उसकी गोद में बैठे हैं और गोद में बैठ के हमको सत्य की समझ दे रहा है। वो क्या दे रहा है हमको? हम असत्य में सारा जीवन खोए बैठे थे, इसने मेरा ऐसे कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा नहीं, जब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगी, इसका ऐसा नहीं हो जाए ऐसा, सपने में भी रात हर जगह हर चीज में उसका उसी के बारे सोचते रहते थे, मेरे को ये हुआ, मेरे को ये हुआ, मेरा क्या होगा, मेरा क्या, उसका क्या होगा, है ना, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, धंधे का क्या होगा, नहीं, जमीन के भाव नीचे हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, है ना, अभी शेयर मार्केट ऊपर जा रही, नीचे जा रही है, अरे तुम्हारी मार्केट क्या हो रही है? तुम्हारे हार्ट का ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है? नहीं, तुम्हारी शुगर ऊपर नीचे हो रही है, क्या हो रहा है? तुम्हारी शेयर मार्केट ऊपर नीचे जा रही है कि तुम्हारा शुगर ऊपर नीचे जा रही है? है जी, शुगर ऊपर नीचे हो रही है। तो सुना आपने, तो ये अपने से गहराई से समझने की आवश्यकता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अभी समझ में आए। अब जो बाबा मुझे समझा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ये मुरली क्या होती है? परमात्मा के जो महावाक्य सुनते हैं हम, ये मुरली जो बात करते हैं, मुरली सुनाई, मुरली को बांसुरी में जाते हैं, मुरली माना परमात्मा के महावाक्य जो है ना, वो श्री बाबा जो श्री ब्रह्मा के द्वारा सुनाता है उसको मुरली कहते हैं। उसमें हमें सत्य की समझ दे रहा है, रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान दे रहा है, कर्मों की फिलॉसफी समझा रहा है, तुम्हें तकलीफ क्यों आ रही है, तुम ठीक कैसे हो गए, तुम्हारे दुख क्यों आ रहे हैं, ठीक कैसे होंगे, सुख कैसे मिलेगा, वो समझा रहा है, राइट? तो ये सत्य की समझ अपनी गोद में बिठा के कर रहा है, राइट? हर एक को गोद में बिठा के करा रहा है। तो अभी क्या अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अभी बहुत अच्छा हो रहा है। और भविष्य में क्या होगा? आज शाम को क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है? पहले बीज बबूल का था, कांटे मिले, और अभी आम बो रहे हैं तो क्या मिलेंगे? आम मिलेंगे, ठीक है ना? अब जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, कल क्या होना है उससे भी अच्छा, परसों उससे भी अच्छा, तरसों उससे भी अच्छा, अब अच्छे अच्छा होने वाला, बुरा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो है ABCD की यहाँ पर आत्मा में एनर्जी है, और ये एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ मेंटल एनर्जी में बदलती है। मेंटल एनर्जी में ना टीम, मैं समझता हूँ टाइम हमारा, फ्रूट खाने का भी टाइम है ये, मैं चलो इसको बस ये मैं यहाँ पूरा कर देता हूँ। तो ये बात समझ में आई नहीं है आपको? ये जो है चीज़ हमें समझ लेनी है कि हमारी जो ये, मैं शाम को फिर चालू करूँगा दोबारा से, पर आप ये समझ लो कि हमारी जो मन जो है ना, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज, मन माना टीम, तो हमारी टीम पॉजिटिव है तो हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, और हमारी टीम नेगेटिव है तो हम बहुत भारी महसूस करते हैं। टीम पॉजिटिव तो जीवन के मैच, हमारा जीवन मैच है, एक दिन में कितने कितने मैच होते हैं, कितने कितने गेम्स खेलनी पड़ती हैं। अगर हमारी टीम पॉजिटिव है तो हम मैच जीतते हैं, गेम्स जीत जाते हैं, मतलब जीवन में हम सफलता मिलती है, और हमारी टीम अगर नेगेटिव हो गई तो हम क्या करते हैं, हारते रहते हैं, और हारने से फिर दुख होता है, उदासी आती है, चिंता होती है, दुख गुस्सा आता है, इसके हम गहराई बाद में समझेंगे। तो अभी आप ये अंदर समझ लो कि कैसे जो आत्मा जो है यहाँ बैठ करके ये पूरा कनेक्शन, पूरा नर्व्स है ना, पूरी की पूरी एनर्जी कैसे रेगुलेट करती है, सब नव 5 कर्मेंद्रियाँ काम करती हैं, और ऊपर हायर ब्रेन भी कंट्रोल करती है ना। ठीक है, चलिए फिर हम, मैं समझता हूँ अभी फल खा लें, और फल खा के फिर हम, समझ में आई ऊपर से गई बात, समझ में आई। और ये जो मैंने कहा ना कान, कान के कान जो है ना, जैसे हमारी नाक है हमारी, अब नाक हम सोते हैं, जब हम सो जाते हैं तो यहाँ पर क्या पहरेदार बैठे होते हैं क्या, नाक में मच्छर घुस जाए, चींटियाँ घुस जाए, कुछ भी घुस सकता है ना, है जी, क्या हुआ। नहीं तो नाक पे, अगर नाक पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो चौकीदार बिठाने पड़ेंगे ना, एक इधर को, नहीं कि अंदर नाक में कुछ घुसे नहीं रात में ना, ये नाक बंद करके सोना पड़ेगा। कान में क्या घुस, कान में घुस सकता है कोई, ये फाइबर गए हुए हैं है ना, ये फाइबर जो गए हुए हैं, तो ये आपको जैसे रात में भी अगर कुछ घुस जाए तो एकदम जाग जाते हो ना, नाक में भी कुछ चला जाए तो घुस, अगर आँख की तरफ भी कोई ऐसे भी करे तो क्या आँख एकदम बंद हो जाती है ना, तो ये आपके अंदर फाइबर गए, लाल तार, हरी तार और एक्टिव जागृत करने का सिस्टम है ना, अलर्ट करने का सिस्टम लगा हुआ, तो ये आपके अंदर हर जगह गए हुए हैं। और कान में ऐसे जैसे आप सुबह से उठ के कुरला कर लेते हो, ब्रश कर लेते हो, मुंह धो लेते हो, सिर में थोड़ा पानी लगा लेते हो और टॉवल से रगड़ लेते हो, जाग जाते हो, अलर्ट हो जाते हो नहीं। और कान स्पेशली ये जो ये एरिया ना, ये वाला एरिया, ये बहुत ही, इसमें बहुत फाइबर्स गए हुए हैं, बहुत सारे फाइबर्स, इसलिए कोई भी गलत काम करता है ना तो क्या पकड़ते हैं हमेशा, नाक नहीं पकड़ते, ठोड़ी नहीं पकड़ते, गाल नहीं पकड़ते, क्या पकड़ते हैं, कान पकड़ते हैं। मुर्गा बनाते क्या पकड़ते हैं, कान पकड़ते हैं ना, तो कान पे ऐसे सब बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, इससे कभी आपको नींद आ रही ना तो अपने अपने कान खुद ही पकड़ के ना ऐसे ऐसे रगड़ दो जोर से, है ना। तो देखो अभी अभी रगड़ के देखो, सभी रगड़ हो जा रहा है, एक बार रगड़ो सभी, फल खाने के बाद रगड़ के देख लो, दोनों कान, दोनों पकड़ो, दोनों पकड़ो, देखो आँख खुलती जा रही है ना, आँख खुलती जा रही है, महसूस हो रही है, तो आँख खुलती जाएगी, अलर्ट होते जाओ, है ना। ठीक है, तो ये मैं ऐसे नहीं मजाक कर रहा था आपके साथ, ये रियल बात है ना, तो कान में ऐसे फाइबर्स होते हैं ना, तो इससे आप जागृत हो जाते हैं। ओके, चलो एक मिनट, चलो साइलेंस, बैठो बैठो बैठो, हमेशा ध्यान रखो, मेडिटेशन करने से क्या क्या आती है हमारे जीवन में, शांति, प्यार, खुशी आती है ना। तो हमेशा कोई काम शुरू करो, मेडिटेशन से शुरू करो, एक मिनट मेडिटेशन करो, काम पूरा करो, एक मिनट मेडिटेशन करो। घर में कभी लड़ाई भी करनी हो ना पत्नी से या पति से या किसी से भी, तो पहले मेडिटेशन करो, फिर लड़ाई करो, फिर मेडिटेशन करो, तो लड़ाई में भी शांति रहेगी, प्यार खुशी से रहेगी ना। ठीक है, ध्यान रखना है, आगे से आपस में याद दिला देना, कभी भी लड़ाई का पॉइंट बने ना कुछ, तो बोलो एक मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर ना फिर लड़ाई कर लेते हैं, फिर लड़ाई होने के बाद फिर बोलो अभी एक मिनट मेडिटेशन करते हैं। ठीक है,